देखिए भाई आगे सबक वकद इस्तमलू यानी العرب صيغة النداء يعني يا خاصة في المندوب لأنه لا يدخل عليه سواها لكونها أشهر صيغها فكانت أولى بأن يتوسع فيها باستعمالها في غير المنادى والمندوب في اللغة ميت يبكي عليه أحد ويعد محاسنه ليعلم الناس أن موته أمر عظيم ليعزروه في البكاء ويشاركوه في التفجع. گزشتہ سبق میں ترخیم منادا کی بحث چل رہی تھی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منادا جو ہے ترخیم کی مقدار کے اعتبار سے تین قسم پر ہے. بعض اوقات منادا کے آخر سے ترخیم کرتے ہوئے صرف ایک حرف اڑایا جاتا ہے, ایک حرف گرایا جاتا ہے, اور بعض اوقات دو حرف گرائے جاتے ہیں, اور بعض اوقات جب منادا مرکب ہو تو اس کے آخر سے پورا ایک کلمہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ تین قسم پر ہوا منادا ترخیم کی مقدار کے اعتبار سے. اور پھر تفصیل بیان کی تھی کہ ایک کلمہ کہاں گرائیں گے, ایک حرف کہاں گرائیں گے, اور دو حرف کہاں گرائیں گے. تو آپ کو بتلایا تھا کہ جب منادا کے آخر میں دو ایسی زیادتیاں ہوں جو حکم واحدہ میں ہوں بھئی, یعنی ان دونوں کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہو, تو ترخیم کے وقت ان دونوں کو اکٹھا ہی گرا دیں گے. اور یا پھر منادا جو ہے اس کے آخر میں ایسا حرف صحیح اصلی ہے کہ جس سے ماقبل میں حرف مدہ زائدہ ہے اور وہ منادا چار حروف سے زائد پر مشتمل ہے, تو پھر اس منادا کے آخر سے بھی حرف صحیح اور اس کے ماقبل جو حرف مدہ زائدہ ہے دونوں کو اکٹھا ہی گرائیں گے بھائی. اور اگر منادا مرکب ہو یعنی مرکب اضافی اور مرکب اسنادی کے علاوہ ہو, یعنی مضاف مضاف الیہ بھی نہ ہو وہ اور جملہ بھی نہ ہو, تو پھر اس صورت میں وہ جو مرکب ہے اس کا آخری جز جو ہے اس کو ختم کر دیں گے, گرا دیں گے. جیسے یا بعل بک کو اس میں ترخیم کرتے ہوئے ندا کیسے دیں گے, یا بعل اصل حرکت جو ہے وہ بھی پڑھنا جائز اور ضمہ پڑھنا بھی جائز, تو یا بعلا اور یا بعلو. اور اسی طرح کسی کا نام خمسہ عشرہ ہے تو پھر اس کے اندر بھی یا خمسہ اور یا خمسہ جو اصلی حرکت ہے وہ پڑھنا بھی جائز اور ضمہ بھی جائز ہے بھائی. اور اس کے علاوہ ان تین کے علاوہ کوئی اور منادہ ہو تو پھر ترخیم کے وقت اس سے صرف ایک حرف گرائیں گے بھائی, ایک حرف. اور البتہ میں نے بتایا وہ پچھلی شرائط کا بھی لحاظ رکھنا ہے. ترخیم کی چار شرائط تھیں, تین عدمی تھیں اور ایک وجودی. عدمی شرط کیا تھی کہ منادا جو ہے وہ مضاف بھی نہ ہو, مستغاث بھی نہ ہو اور جملہ بھی نہ ہو, اور وجودی شرط جو ہے احد الامرین تھی, دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے, یا تو وہ منادا ایسا علم ہو جو تین حروف سے زائد ہو تاکہ حروف گرانے کے بعد بھی وہ کم از کم تین حروف پر باقی رہ جائے, یا اس منادا کے آخر میں تائے تانیس ہو بھائی تو پھر اس تا کو گرا دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ منادا مرخم جو ہے یہ اسی منادا کے حکم میں ہے جس کے تمام اجزاء ثابت ہوں, لہذا وہی پہلی اصلی حرکت پڑھنا بھی جائز اور اس کے ساتھ مستقل اسم والا معاملہ کرنا بھی صحیح ہے بھائی. لہذا یا حارسو یہاں پر اگر آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو آخر سے سا کو گرایا تو را پر وہی حرکت باقی رکھنا بھی صحیح ہے جو پہلے تھی, اور یا حارسو میں را کے نیچے کسرہ ہے تو ابھی بھی کسرہ پڑھ سکتے ہیں یا ہاری, اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہارو. اسی طرح سمود کو ندا دینا چاہتے ہیں تو ترخیم کرتے ہوئے دال گرا دیں گے اور باقی کلمے کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کہ دال موجود ہے, تو کیسے ندا دیں گے یا سمو, اور اس کے ساتھ مستقل اسم والا معاملہ کرتے ہوئے اس میں اعلال بھی جائز ہے, اس لیے کیونکہ دال کو جب گرا دیا اور سمو کو مستقل اسم کے درجے میں اتار لیا تو اس کے آخر میں واو آیا اور ماقبل واو کے ضمہ ہے, और जिस इसम के आखिर में भी वाव आए और माकबल जम्मा हो तो उस वाव को हमेशा या से बदलते हैं और माकबल को फिर कसरा दे देते हैं। तो या समी कहना भी सही भाई। जैसे दलवुन, दलवुन अरबी जुबान में डोल को कहते हैं और इसकी जमा अदलिन आती है। क्या आती है? अदलिन। अदलिन असल में था अदलुवुन अफउलुन। दलवुन है ना, दाल लाम वाव, तो किस वजन पर जमा है? अफउल वजन पर, अदलुवुन। तो देखो इसम के आखिर में वाव आया और वाव का माकबल मजमूम है और जब भी ऐसा मकाम आए तो उस वाव को किसे बदलते हैं? या से। और फिर या अपने से माकबल कसरा चाहती है तो उस जम्मा को कसरा से बदल देते हैं। तो क्या बन गया? अदलियन। फिर या पर कसरा सकील था, उसको गिरा दिया, या साकिन हो गई, आगे नूने तनवीन भी साकिन है तो इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद ही आया। तो अव्वल हरफे मद्दा जो या थी उसको गिरा दिया तो क्या बन गया? अदलिन। बात समझ में आ गई, अदलिन हो गया। और इसी तरह या करावानो, करावान एक परिंदे का नाम है भाई, जिसे उर्दू में सुरखाब कहते हैं भाई। तो इसके आखिर से अलिफ और नून को गिरा दिया तो या कारावा उसी तरह पढ़ेंगे जैसे अलिफ और नून अभी भी मौजूद हैं। और आप चाहें तो इसके साथ मुस्तकिल इसम का मामला करें, गोया इसके साथ अलिफ नून थे ही नहीं। तो लिहाजा जब अलिफ और नून थे ही नहीं तो वो के अंदर अब इलाल करना पड़ेगा क्योंकि वो मुतहर्रिक माकबल फतहा है, तो उसको किससे बदलेंगे? अलिफ से। तो कैसे निदा देंगे? या करा, पहले वो के बाद अलिफ था ना, तो वो आपने कानून पढ़ा है वो और या मुतहर्रिक हो और माकबल फतहा हो तो उसको अलिफ से बदलते हैं। लेकिन इस कानून की कई शराइत हैं, उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि उस वो और या के बाद कोई हर्फ साकिन ना हो, उस वो और या के बाद कोई हर्फ साकिन ना हो। चुनाचे कारावान, इसमें वो मुतहर्रिक है, माकबल फतहा भी है, लेकिन इसको अलिफ से नहीं बदल रहे क्योंकि वो के बाद अलिफ साकिन मौजूद है। या जैसे दूसरी मिसाल ले लो, रमा रमा या। अब रमा के अंदर या को अलिफ से बदला क्योंकि माकबल मीम पर फतहा था, लेकिन रमा या इसके अंदर भी या मुतहर्रिक है और माकबल मीम पर फतहा है, लेकिन इस या को अलिफ से नहीं बदल रहे। क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि इस या के बाद अलिफ साकिन आ रहा है भाई। तो यहां पर भी या कारावान के अंदर वाव नहीं बदलेंगे क्योंकि आखिर में अलिफ नून है, लेकिन जब अलिफ नून को गिरा दिया तो अब आप चाहें इसी तरह पढ़ें या कारावा जैसे अलिफ नून अभी भी मौजूद है, या आप चाहें तो इसको मुस्तकिल इसम बना दें। तो अब आखिर से अलिफ साकिन खत्म हुआ, मानिए एलाल खत्म हो गया, तो अब एलाल कर देंगे और वाव को अलिफ से बदल देंगे। और कैसे निदा देंगे? या कारा। सूरत समझ में आ गई जी। अब आगे देखिए आज का सबक भाई। وَقَدِسْتَعْمَلُوا يَعْنِ الْعَرَبَ سِيغَةً نِدَائِ يَعْنِ يَا خَاصَّةً فِي الْمَنْدُوبِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ سِوَاهَا لِكَوْنِهَا أَشْهَرَ سِيَغِهَا। जी आज हम मंदूब के बारे में पढ़ेंगे भाई। पहले मतन मतन सिर्फ देख लीजिए। कहते हैं वकदिस्तामलू सीगतन निदाई, और तहकीक अरब इस्तेमाल करते हैं, ये वाव जमीर किसको राजे? अरब को। और तहकीक अरब जो है वो इस्तेमाल करते हैं निदा का सीगा फिल मंदूबी, किसके अंदर? मंदूब के अंदर भाई। मंदूब का जिक्र पहले भी कई दफा हो चुका। मंदूब वो मैयत जिस पर रोया जाए। अरब में जब किसी का इंतकाल हो जाता तो उस पर रोया जाता, नौहा किया जाता और उसको पुकारते। या मसलन जैद का इंतकाल हुआ है तो या जैदु, या कभी वा ले आते वा जैदु, और कभी इसी के आखिर में अलिफ भी मिला देते या जैदा वा जैदा, और कभी वक्फ की सूरत में हा भी साथ मिला देते या जैदाह वा जैदाह। तो देखो या जो है वो मुनादा के लिए भी इस्तेमाल होती है और मंदूब के लिए भी, जबकि वा जो है वा ये खास है मंदूब के साथ, ये वा सिर्फ मंदूब के लिए इस्तेमाल होता है, निदा के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता। तो कहते हैं वक़द इस्तामलू सीगतन निदाई फिल मंदूबी, और तहकीक अरब इस्तेमाल करते हैं निदा का सीगा फिल मंदूबी मंदूब में। निदा के सीगे से मुराद है यानी हुरूफ निदा, लेकिन उनमें से सिर्फ या मुराद है यहां पर। आपने पढ़ा है हुरूफ निदा पांच हैं, या, आया, हया, ऐ और हमजा। इनमें से जो या है वो है असल, लिहाजा वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है या निदा के लिए। और नीज हजफ भी सिर्फ या को किया जाता है। जहां कहीं आपको यह कह दिया जाए कि यहां पर हर्फ निदा महजूफ है, तो फौरन समझ जाए कि यहां या महजूफ है, क्योंकि बाकी हरूफ निदा महजूफ नहीं होते भाई। और नीज मंदूब के लिए भी सिर्फ या इस्तेमाल होती है, बाकी हरूफ निदा इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि यह असल है और सबसे मशहूर है निदा के अंदर भाई। तो कहते हैं वक़द इस्तामलू सीगतन निदाई फिल मंदूबी, और तहकीक अरब इस्तेमाल करते हैं निदा का सीगा मंदूब में, यानी या को खास तौर पर। आगे देखिए मतन भाई, वहुअल मुतफज्जउ अलैहि बिया औ वा, ये तारीफ कर रहे हैं। मैंने आपको बतला दिया अरबी जुबान में मंदूब किसे कहते हैं, वो मैयत जिस पर रोया जाए। किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उस पर रोया जा रहा है, तो वो क्या है, मंदूब है, उस पर रोया जाता है और उसकी खूबियां गिनवाई जाती हैं, खूबियां शुमार की जाती हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये वाकई इस लायक था कि इस पर रोया जाए, इसके दुनिया से चले जाने से बड़ा नुकसान हुआ है, ये इस लायक था कि इस पर रोया जाए भाई। तो उस पर रोया जाता और उसकी खूबियां शुमार करवाते थे, इसको मंदूब कहते हैं अरबी जुबान में। तो नुदबत जो है, नुदबत ये मैयत पर रोना, मैयत पर रोना। लेकिन इस्तिलाह नहव के अंदर, नहव में मंदूब किसे कहते हैं, अब वो तारीफ करने लगे हैं। कहते हैं वह हुवल मुतफज्जउ अलैहि बि या औ वा, मंदूब जो है वो मुतफज्ज अलैह है या वा के साथ, यानी वो जिस पर रोया जाए, जिस पर दुखी हुआ जाए, जिस पर दर्दमंद हुआ जाए। तफज्जउ का माना है दुखी होना, दर्दमंद होना, यूं को इजहारे गम करना भाई। तो इस्तेलाह के अंदर किसे कहते हैं, वह हुवल मुतफज्जउ अलैहि, मंदूब जो है वो मुतफज्ज अलैह है, यानी जिस पर दुखी हुआ जाए, दर्दमंद हुआ जाए, इजहारे गम किया जाए, बी या औ वा, या वा के साथ, या वा के साथ उस पर दुखी हुआ जाए, इजहारे गम किया जाए। तो मालूम हुआ मंदूब में या और वा जरूर इस्तेमाल होंगे भाई, और उस पर इजहार गम किया जा रहा होगा, दुखी और दर्दमंद। फिर याद रखना, ये जो मुतफज्ज अलैह है, ये दो किस्म पर हो सकता है। कभी एक चीज के न होने पर इजहार गम किया जाता है और इंसान दर्दमंद होता है, जैसे वो मैयत है, उसका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चला गया, वो मादूम हो गया, तो उसके न होने पर क्या किया जा रहा है, इजहार गम किया जा रहा है भाई, उस पर रो रहे हैं उसके न होने पर। और बाज औकात किसी चीज के होने पर जो है इजहार गम किया जाता है और रोया जाता है, जैसे कोई कहता है वाह मुसीबताह, देखो मुसीबत के होने पर इजहार गम किया जा रहा है, या वाह हसरता, हसरत और अफसोस के होने पर इजहार गम किया जा रहा है, वाह वैला, हाय हलाकत, देखो हलाकत और बर्बादी के होने पर रोया जा रहा है। तो मुतफज्ज अलैह जो है वो आदमन भी हो सकता है और वजूदन भी, कभी किसी चीज के होने की वजह से रोया जाता है और कभी किसी चीज के न होने की वजह से रोया जाता है। तो कहते हैं वह अल मुतफज्जउ अलैहि बि या औ वा, मंदूब जो है वो मुतफज्ज अलैह है, वो है जिस पर इजहार गम किया जा रहा है, बि या औ वा, या वा के साथ जी। आगे देखिए वख्तुस्सबी वा, और मंदूब खास है वा के साथ, मंदूब यानी वा जो है वो सिर्फ मंदूब के साथ इस्तेमाल होता है, या तो आम है मुनादा के लिए भी इस्तेमाल और मंदूब के लिए भी, लेकिन वा जो है वो खास है मंदूब के साथ, वो सिर्फ मंदूब के लिए इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं वक्तुस्सबी वा, और मंदूब जो है वो खास है वा के साथ, व हुक्मुहु फिल इराबी वल बिनाई हुक्मुल मुनादा, और मंदूब का हुक्म जो है मुआरब होने और मबनी होने में मुनादा के हुक्म की तरह है। मंदूब का हुक्म मुआरब और मबनी होने में मुनादा की तरह है, जैसे आपने पढ़ा था मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी अला जम, तो मंदूब भी अगर मुफरद मारिफा हुआ तो वो मबनी होगा अलामत जम पर, या जैदु, जैद मर गया है, या वा जैदु, सूरत समझ में आ रही है। और मुनादा अगर मुजाफ हो या मुशाबह मुजाफ हो या नकरा गैर मुअय्यन हो तो वह मंसूब होता है। तो इसी तरह मंदूब के अंदर भी होगा, मंदूब अगर क्या हो, मुजाफ हो या मुशाबह मुजाफ हो तो वो मंसूब होगा। हां, नकेरा गैर मुअय्यन वो मंदूब नहीं हो सकता, क्योंकि रोया जा रहा है तो कोई मालूम आदमी होगा ना जिस पर रोया जा रहा है, अगर मालूम ही नहीं है तो फिर इजहार गम का क्या माना भाई। तो लिहाजा नकेरा गैर मुअय्यन वो मंदूब नहीं होता, बाकी मुजाफ भी हो सकता है और मुशाबह मुजाफ भी। तो जिस तरह मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी होता है, मंदूब भी मबनी अलज़म होगा, और जिस तरह मुनादा मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो तो मंसूब होता है, तो मंदूब भी मंसूब होगा। तो कहते हैं वह हुक्मुहु फिल एराबी वल बिनाई हुक्मुल मुनादा, और मंदूब का हुक्म मौरब और मबनी होने में हुक्मुल मुनादा, मुनादा का हुक्म है, यानी उसी की तरह इसका भी हुक्म है। वलका ज्यादतुल अलिफी फी आखिरी ही, और आपके लिए यह भी जायज है कि आप अलिफ की ज्यादती करें फी आखिरी ही, मंदूब के आखिर में। भाई मंदूब पर इजहार गम किया जा रहा है, रोया जा रहा है, लिहाजा इंसान चाहता है कि उसकी आवाज जरा लंबी हो गई, तो उसके लिए उसके आखिर में अलिफ का मिलाना भी जायज है। लिहाजा या जईदा और वा जईदा, और साथ वक्फ की सूरत में हा भी मिला सकते हैं, या जईदाह वा जईदाह। तो कहते हैं वलक ज़ियादतुल अलिफी फी आखिरी ही, और आपके लिए अलिफ का बढ़ाना जायज है मंदूब के आखिर में। फइन खिफ्ता लबसा कुलता वा गुलामकी वा गुलामकुमूह। भाई देखिए, इन्होंने आपको बतलाया कि मंदूब के आखिर में आप अलिफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाज औकात अगर अलिफ को बढ़ाया जाए तो इल्तिबास का खतरा है भाई। इल्तिबास यानी मंदूब का इल्तिबास लाजिम आएगा गैर मंदूब के साथ, तो उस मौका पर अलिफ के बजाय मौका के मुताबिक वाओ या को भी आप बढ़ा सकते हैं। मसलन एक औरत है, एक मुखातबा है, उसका गुलाम मर गया, अब उस पर कोई नुदबत करता है और कैसे कहेगा, वा गुलाम की, देखो काफ मुअन्नस मुखातबा की जमीर है, ए मुअन्नस मुखातबा तेरा गुलाम, बात समझ में आ रही है। तो वा गुलामा की, और गुलामा मैंने मंसूब पढ़ा क्योंकि ये मुजाफ है भाई, और मुनादा मुजाफ हो तो वो मंसूब होता है, तो मंदूब भी जब मुजाफ हो तो वो मंसूब होगा। अब वा गुलामा की, इस पर नुदबत की जा रही है मुअन्नस मुखातबा के गुलाम पर। अब आप इसके साथ अगर आप अलिफ बढ़ा दें तो वा गुलाम का, तो अब तो पता नहीं चलेगा कि ये काफ जमीर मुअन्नस की है या मुजक्कर की, क्योंकि काफ पर फतहा आ गया, अलिफ अपने से माकबल फतहा चाहता है, तो बजाहिर यही लगेगा कि शायद ये किसी मुजक्कर मुखातब के गुलाम पर नुदबत की जा रही है। तो लिहाजा ऐसे मौके पर अलिफ के बजाय उस लफ्ज की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत को बढ़ाना भी जायज। और गुलाम की काफ के नीचे क्या है, कसरा, और कसरा के मुनासिब क्या है, या, लिहाजा या बढ़ाई जाएगी यहां पर, वा गुलाम की। इसी तरह कोई शख्स वो नुदबत कर रहा है, रो रहा है, जमा मुजक्कर के गुलाम पर, वा गुलामकुम, वा गुलामकुम, यानी तुम मुजक्कर मुखातब जो हो, तुम्हारा जो गुलाम है उस पर नुदबत की जा रही है, उस पर रोया जा रहा है। अब इसके आखिर में अगर हम अलिफ बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वा गुलामकुमा। देखा कुमा, ये तो तस्निया की जमीर बजाहिर मालूम होगी, तो इल्तिबास लाजिम आएगा किसका, मंदूब का गैर मंदूब के साथ, रोया तो किस पर जा रहा है, जमा मुजक्कर के गुलाम पर, और बजाहिर यूं लग रहा है कि तस्निया मुजक्कर के गुलाम पर रोया जा रहा है। तो ऐसे मौका पर फिर ये गुलामकुम जो है, यहां पर फिर वाव बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, वाव बढ़ाएंगे, तवज्जो है, तो कैसे कहेंगे, वा गुलामकुमूह। तो सवाल पैदा होता है वाव क्यों बढ़ाया आपने, आपने तो क्या कहा था कि मकबल की हरकत को देखेंगे उसके मुताबिक हरफ इल्लत लाएंगे, और यहां तो कुम के आखिर में मीम साकिन है, तो याद रखना ये मीम जो है फिलहाल साकिन है लेकिन असल में इस पर जम्मा था भाई, इस मीम पर असल में क्या था? जम्मा था। चुनाचे बास किरातों के अंदर भी अंतुम और कुम की जमीरों पर अंतुमो कुमो इस तरह पढ़ते हैं, बास किरातों में इस तरह है। तो मालूम हुआ ये जो जमा मुजक्कर की जमीर है इसका मीम असल में साकिन नहीं था बल्कि उस पर जम्मा था, और जम्मे के मुनासिब क्या है? वो, तो यहां वो बढ़ा देंगे और कैसे कहेंगे? वा गुलामा कुमूह। सूरत समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं फइन खिफ्तल लबसा, अगर आपको इल्तिबास यानी इश्तिबाह का खतरा हो, इश्तिबाह का खौफ हो, कुलता तो आप यूं कहेंगे वा गुलामा कीह वा गुलामा कुमूह। भाई आपकी किताबों में गुलामू तो नहीं है, मीम पर जम्मा तो नहीं है जी? मीम पर जम्मा है भाई, मीम पर जम्मा नहीं होना चाहिए भाई। वजह यह कि ये मुजाफ है भाई, गुलाम मुजाफ है और कुम मुजाफोन इले, और मुनादा जब मुजाफ हो तो मंसूब होता है तो मंदूब भी मंसूब होगा। तो वा गुलाम मकुमूह वलकल हा उफिल वक्फी, और आपके लिए हा का मिलाना भी जायज है वक्फ की हालत में, वक्फ की हालत में भाई। वला युंदबु इल्लल मारूफ, और नुदबत नहीं की जाएगी मगर मारूफ पर, यानी ऐसे शख्स पर जो मारूफ हो, जिसको लोग जानते हो भाई, जानते हो। वजह यह कि जब वो मालूम आदमी होगा उस पर वो रो रहा है तो लोग भी माजूर समझेंगे कि हां वाकई एक बड़े आदमी का इंतकाल हुआ है, ये जो आदमी रो रहा है ये माजूर है भाई, ये इस मामले में माजूर है कि देखो इतना बड़ा आदमी दुनिया से चला गया है तो ये रोने ही का मकाम है भाई। तो कहते हैं वला युंदबु इल्लल मारूफ, और नुदबत नहीं की जाएगी मगर मारूफ पर। फला युकाल वा रजुला, लिहाजा वा रजुला नहीं कहेंगे, यानी ऐसा शख्स जो मारूफ नहीं है, जिसको लोग जानते ही नहीं है, उस पर नुदबत नहीं की जाएगी, लिहाजा वा रजुला कहना सही नहीं। मैंने भी आपको बतलाया कि नकिरा गैर मुआयन जो है वो मंदूब नहीं बन सकता भाई। यहां तक बात समझ में आ गई जी। अब शरा के साथ देखिए भाई, शुरू से फिर देखिए। वकद इस्तेमालू, और तहकीक अरबों ने इस्तेमाल किया है या अनिल अरबा भाई। कद इस्तेमालू के आखिर में वो जमीर आ रही है जमा मुजक्कर गायब की, तो ये जमीर किसको राजे है? साहिब जामी बतला रहे हैं या अनिल अरबा, अना यानी का माना है मुराद होना, इरादा करना। यानी यानी साहिब काफिया की मुराद जो है अल अरबा, वो अरब हैं भाई, तो ये अल अरब मफूल भी ही बनेगा यानी के लिए। यानी अल अरबा यानी का साहिब काफिया ने अरब का इरादा किया। सीगतन निदाई, तो इस्तेमाल करते हैं अरब निदा का सीगा, यानी या खासतन यानी खास तौर पर। या भाई निदा के तो पांच सीगे हैं, या अया हया ऐ और हमजा, लेकिन उनमें से खास सीगा निदा सिर्फ या जो है वो इस्तेमाल होता है मंदूब में, इसीलिए कहा यानी या खासतन यानी खास तौर पर या को। फिल मंदूबी, किसके अंदर? मंदूब में। अच्छा भाई देखिए, बहस चल रही है मुनादा की, मुनादा की, और दरमियान में साहिब काफिया अब मंदूब का जिक्र फरमा रहे हैं, हालांकि साहिब काफिया के नजदीक मंदूब मुनादा में दाखिल नहीं, क्योंकि मुनादा किसे कहते हैं? जिसकी तवज्जो मतलूब होती है, और मंदूब पर तो रोया जा रहा है, उसका इंतकाल हो चुका है, वहां उसकी तवज्जो मतलूब नहीं है भाई। तो साहिब काफिया के नजदीक मंदूब मुनादा के अंदर दाखिल नहीं, बाकी नहवियों के नजदीक मंदूब भी क्या है? मुनादा के अंदर दाखिल है। हकीकतन तो उसकी तवज्जो नहीं मतलूब, लेकिन हुक्मन उसकी तवज्जो जो है वो मतलूब है। तो बाकियों के नजदीक मंदूब भी मुनादा है, लेकिन साहिब काफिया के नजदीक मंदूब मुनादा नहीं। तो अब मुनादा की बहस चल रही है, खत्म होने वाली है, और आखिर में साहिब काफिया ने मुनादा की बहस के अंदर ही मंदूब को भी जिक्र कर दिया। तो इश्काल होता है, क्या साहिब काफिया आपके नजदीक तो मंदूब मुनादा में दाखिल ही नहीं, तो उसकी बहस में इसको क्यों जिक्र फरमा रहे हैं? तो वजह यह, वजह यह कि चूंकि मंदूब बहुत से अहकाम के अंदर मुनादा की तरह है, मंदूब बहुत से अहकाम में मुनादा की तरह है, इस वजह से साहिब काफिया ने यहां पर इसको जिक्र कर दिया, अगरचे यह मुनादा के अंदर दाखिल नहीं। या यूं कहें इस वजह से कि मंदूब के अंदर चूंकि या इस्तेमाल होती है जो निदा का सीगा है, جو ندا کا صیغہ ہے. تو جب منادا کی بحث آئی تو صاحب کافیہ کو یہ بھی بتانا پڑا کہ مندوب کے لیے بھی یہ یا استعمال ہوتی ہے, اور جب یہ بتانا پڑا تو جب مندوب کی بات آ گئی تو انہوں نے پھر اس کی تفصیل بھی یہی بیان کر دی. بھائی بات سمجھ میں آگئی, گویا ان کا مقصد یہاں مندوب کو لانا نہیں تھا, لیکن چونکہ مندوب کا ذکر آ گیا تو ساتھ ہی پھر اس کی تفصیل بھی انہوں نے بیان کر دی. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ سِوَاهَا, اس لیے کیونکہ مندوب پر داخل نہیں ہوتا سواہا, اس یا کے علاوہ, یا کے علاوہ اور کوئی صیغہ ندا مندوب پر داخل نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں, باقی صیغے کیوں نہیں داخل ہوتے اور صرف یہی صیغہ کیوں داخل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لِكَوْنِهَا أَشْهَرَ صِيغِهَا, اس لیے کیونکہ یہ جو یا ہے یہ ندا کے صیغوں میں سب سے مشہور یہی صیغہ ہے. فکانت اولا, لہذا یہ زیادہ لائق ہے بِأَنْيُتَوَسَّعَ فِيهَا, کہ اس کے اندر وسعت کی جائے. یہ ندا کے صیغوں میں سب سے مشہور یا ہے, لہذا یہی اس لائق تھا کہ اس میں وسعت کی جائے اور غیر منادا یعنی مندوب کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیا جائے. تو فکانت اولا بِأَنْيُتَوَسَّعَ فِيهَا, تو یہ زیادہ لائق تھا کہ اس کے اندر وسعت کی جائے بِاستعمالِها فِي غیر المنادا, بَعِ صورت کہ اس کو استعمال کیا جائے غیر منادا میں. بات سمجھ میں آگئی, وسعت کی صورت بیان کر رہے ہیں نا کہ اس میں وسعت کی جائے بائی صورت کہ اس کو غیر منادا کے لیے بھی استعمال کیا جائے. والمندوب فی اللغت, اور مندوب جو ہے عربی زبان کے اندر, میت یبکی علیہ احد, وہ میت ہے جس پر کوئی روئے, ویعد محاسنہ, اور اس کی خوبیاں شمار کرے, لیعلم الناس, تاکہ لوگ جان لیں, ان موتہ امر عظیم, کی اس کی موت جو ہے وہ ایک بڑا عظیم امر ہے, ایک بڑی عظیم بات ہے. لیعذروہ فی البکائی, تاکہ وہ اس کو معذور سمجھیں رونے میں, ورنہ تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیوں رو رہا ہے بھائی, لیکن جب وہ اس کے خوبیاں شمار کرواتا ہے پتہ چلتا ہے کوئی بڑا آدمی مرا ہے, لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رونے کے اندر معذور ہے, واقعی یہ شخص اس لائق تھا کہ اس پر رویا جائے. بھائی تو کہتے ہیں لیعذروہ, آزارا یعذرو, بھائی باب افعال سے پڑھیں اس کو, لیعذروہ فی البکائی, تاکہ لوگ اس کو معذور سمجھیں رونے میں, ویشارکوہ فی التفجعی, اور اس کے ساتھ لوگ شریک ہو جائیں درد مند ہونے میں, غمزدہ ہونے میں. وفی الاصطلاحی, اور اصطلاح کے اندر, ہو المتفجع علیہ, مندوب جو ہے وہ متفجع علیہ ہے یعنی جس پر درد مند ہوا جا رہا ہے. بھئی ندبت کا معنی ہے رونا, تفجع کا معنی ہے دکھی ہونا, درد مند ہونا. تو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر ہو المتفجع علیہ, مندوب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے درد مند ہوا جائے, جس کی وجہ سے درد مند اور دکھی ہوا جائے. وجودن او عدمن, باعتبار وجود کے یعنی اس کے ہونے کے, او عدمن یا اس کے نہ ہونے کے, بھی یا او وا, یا وا کے ساتھ, یہ تعریف کا حصہ ہے بھی یا او وا. کسی پر ویسے کوئی اظہار غم کرے یا اور وا کے بغیر, اس کو مندوب نہیں کہیں گے. بھائی مندوب کسے کہتے ہیں؟ جس پر یا اور وا کے ساتھ اظہار غم کیا, یا زید, یہ زید مندوب ہے. ویسے آپ کہتے ہیں بھائی زید کے مرنے پہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, نہیں, اس کو مندوب نہیں کہیں گے. بھائی تو وہ مندوب وہ ہے کہ جس پر دکھی ہوا جائے یا وا کے ساتھ. بھائی دیکھو متن میں آیا تھا ہو المتفجع علیہ, صاحب جامی نے آگے فرمایا وجودن او عدمن, یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ کافیہ کی ایک اور بڑی عظیم شرح بھی ہے جس کے مصنف رضی ہیں. بھائی تو شرح کافیہ لرضی کے نام سے وہ مشہور ہے. بھائی تو علامہ رضی نے یہاں پر اشکال کیا ہے, اشکال کہ بھائی جس پر انسان روتا ہے, جس پر دکھی ہوتا ہے, وہ دو قسم کے ہیں. بعض اوقات ایک چیز کے نہ ہونے پر انسان دکھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک چیز کے ہونے پر دکھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو تعریف کی صاحب کافیہ نے, اعتراض کر رہے ہیں علامہ رضی, یہ تعریف جو ہے متفجع علی عدمن کو تو شامل ہے, وجودن کو شامل نہیں. یہ تعریف متفجع علی عدمن یعنی جس کے نہ ہونے پر دکھی ہے انسان, جو مر چکا ہے اس کو تو یہ تعریف شامل ہے, لیکن متفجع علی وجودن کو یہ تعریف شامل نہیں. جس چیز کے ہونے پر انسان دکھی اور غمزدہ ہو اس کو شامل نہیں. जैसे या मुसीबता, मुसीबत के होने पर इंसान दुखी है, तो यह तारीफ उसको शामिल नहीं। क्यों भाई, उसको क्यों नहीं शामिल, और सिर्फ आदमन को क्यों शामिल है? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जो फेल के साथ जो हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं वो इनका सिला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिला स्वाद के साथ है। तो यहां पर देखो, मुतफज्जा के साथ आला इस्तेमाल हो रहा है, अलैही, आला आला हरफे जर है, तो इसके साथ आला इस्तेमाल हुआ। तो याद रखो, जब किसी चीज के न होने पर रोया जाए, दुखी हो गए इंसान, तो उसके लिए अरबी में मुतफज्जो के साथ आला का सिला इस्तेमाल करते हैं। तो वो मुतफज्जा आले है, वो क्या है? मुतफज्जा आले कौन है? जिसके न होने पर दुखी हो इंसान, और जिसके होने पर दुखी हो उसके लिए अरबी में मीन का सिला इस्तेमाल करते हैं। तो मुसीबत वो मुतफज्जा आले नहीं है, वो मुतफज्जा मिनहु है भाई, मीन सबबिया है, अल मुतफज्जा मिनहु अय मिन सबबिही, यानी उसके सबब से क्या है, दर्दमंद है, दुखी है। तो लिहाजा जो किसी के न होने पर कोई दुखी हो तो उसके लिए अरबी में क्या लफ्ज बोलते हैं? मुतफज्जा अलै। और किसी चीज के होने पर दुखी हो तो उसके लिए क्या लफ्ज बोलते हैं? मुतफज्जा मिनहु बोलते हैं। तो यहां तो मुतफज्जा अलै ही आया, मालूम हुआ किसी चीज के न होने पर कोई दुखी है, किसी के मरने पर कोई दुखी है, और किसी के होने पर भी तो दुखी होता है इंसान, जैसे मुसीबत के होने पर दुखी है, तो यह तारीफ तो उसको शामिल नहीं। साहिब जामी ने उसका जवाब दे दिया कि मुतफज्जा अले आम है, चाहे वजूदन हो या आदमन हो। किस तरह जवाब है? साहिब जामी दरअसल बतलाना यह चाहते हैं कि यह जो मुतफज्जा के साथ अलै ही आया, क्या आया? यह अलै ही जो आया है, यह इसका सिला नहीं है। अगर इस अलै ही को सिला बना दो किसका? मुतफज्जा का, तो फिर इस सूरत में वाकई मुतफज्जा अले आदमन को तो शामिल होगा, वजूदन को शामिल नहीं, लेकिन ये इसका सिला नहीं है। बल्कि यहां अला बमाने लाम के है, वो लाम जो अजलिया होता है, कोई सबब बयान करने के लिए आता है। तो ये अला किस माना में हुआ? लाम के माने में, लाम अजलिया के माना में हुआ। तो देखो माना क्या बन गया, वह हुआ मुतफज्जाउ अलैही अय लहू, अला की जगह क्या ले आओ? लाम ले आओ। मंदूब वो है कि दर्दमंद हुआ जाए, लहू अयली अजली ही, उसकी वजह से दर्दमंद हुआ जाए, उसकी वजह से। अब सारा इश्काल खत्म हुआ। देखो, किसी के होने की वजह से दर्दमंद होता है और किसी के न होने की वजह से दर्दमंद होता है, या सबब का लफ्ज ले आओ, किसी चीज के होने के सबब से दर्दमंद होता है और किसी चीज के न होने के सबब से। तो ये लाम जो है अजलिया है, यानी सबब और इल्लत का माना बयान कर रहा है। तो ये आला सिला नहीं है मुतफज्जा का, बल्कि ये लाम के माना में है कि मंदूब किसे कहते हैं। बात समझ भी आई कि नहीं? मंदूब किसे कहते हैं? वह हुआ मुतफज्जा अलैही भी या अववा, मंदूब वो है कि दर्दमंद हुआ जाए, अलैही अय लहू, उसकी वजह से दर्दमंद हुआ जाए, उसकी वजह से, या और वा के साथ। तो मालूम हुआ जब ये आला, ये इसका सिला ही नहीं है। अगर ये इसका सिला होता तो फिर इश्काल होना था कि मुतफज्जा अले को शामिल है, मुतफज्जा मिनहु को शामिल नहीं, लेकिन बतला दिया कि ये इसका सिला है ही नहीं। यह आला लाम के माना में है, ये सबब बयान करने के लिए यहां जिक्र किया गया है। और सबब के एतबार से तो फिर वो वजूदन वाले मुतफज्जा अले भी इसमें दाखिल और आदमन वाले भी इसमें दाखिल हैं। तकरीर समझ में आ गई? या दूसरा जवाब यह दिया जा सकता है कि इसके अंदर मुतफज्जा अले आदमन भी दाखिल है, आदमन तो दाखिल है ही, ये बात तो वाजह है, वजूदन भी दाखिल है, लेकिन वो मजाजन दाखिल है। एक होती है एक हकीकत और एक है मजाज भाई। तो मुतफज्जा अले जो भी हो, चाहे हकीकतन हो चाहे मजाजन हो भाई, मुतफज्जा अले हकीकतन कौन सा है? जिसके न होने की वजह से दुखी है, यानी मैयत है, मर चुका है। और मुतफज्जा अले वजूदन क्या है? जिसके होने के सबब से गमजदा है। तो मुतफज्जा अले आदमन वो हकीकतन मुतफज्जा अले है, और मुतफज्जा अले वजूदन वो मजाजन मुतफज्जा अले, हकीकतन तो वो नहीं है। तो दो जवाब हो गए भाई। एक जवाब क्या कि आला को सिला न बनाए मुतफज्जा का, बल्कि आला बमाने लाम के है, और लाम किस माना में है, लाम कौन सा है, अजलिया है भाई, जो सबब बयान करता है, या मुतफज्जा अलैह वजूदन इसके अंदर दाखिल है क्योंकि वो भी मजाजन मुतफज्जा अलैह है, हकीकतन तो नहीं लेकिन मजाजन है भाई। तो कहते हैं वफिल इस्तेलाही, और इस्तेलाह के अंदर यानी उलमाए नहु की इस्तेलाह में हुवल मुतफज्जा अलैही वजूदन औ अदमन, मंदूब जो है वो है जिसकी वजह से दर्दमंद हुआ जाए, वजूदन बैतबार उसके होने के, औ अदमन या उसके न होने के भी, या औ वा या वा के साथ, फल मुतफज्जा अलैही अदमन, पस मुतफज्जा अलैह अदमन जो है, मा युतफज्जा अला अदमी ही वो है कि दर्दमंद हुआ जाए, दुखी हुआ जाए, अला अदमी ही उसके न होने पर, कल मैयत अल्लज़ी यबकी अलैहि नादिबु, जैसे कि वो मैयत है जिसके ऊपर नुदबत करने वाला रो रहा है, जिस पर नुदबत करने वाला रोता है, वल मुतफज्जा अलैहि वजूदन, और मुतफज्जा अलैहि वजूदन जो है, मा युतफज्जा अला वजूदिही वो है कि जिस पर दुखी हुआ जाए, अला वजूदिही उसके वजूद पर, दुखी हुआ जाए उसके वजूद पर यानी उसके होने पर। भाई देखिए भाई, इधर देखिए, ये दोनों चीजें होंगी इकट्ठी ही भाई। देखो मैयत के न होने पर दुखी है और मुसीबत के होने पर दुखी है, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी हैं। ये मुसीबत क्यों है, मैयत के न होने की वजह से ही तो है, बात समझ में आ गई। और ये हसरत क्यों है, मैयत के न होने की वजह से ही तो हसरत और अफसोस है, या वा वैला, ये हलाकत और बर्बादी क्यों है, मैयत के न होने की वजह से ही तो ये बर्बादी है। तो उसी वक्त मैयत का न होना यानी मुतफज्जा अले आदमन भी वही होगा और मुतफज्जा अले वजूदन भी वही होगा। तो कहते हैं वल मुतफज्जा अले ही वजूदन, और मुतफज्जा अले वजूदन जो है, मा युतफज्जा अला वजूदी ही के दुखी हुआ जाए उसके वजूद पर, इंद फकदिल मुतफज्जा अले ही, फकद, फकद का माना है न होना, मफकूद किसे कहते हैं, मफकूद वो चीज जो न पाई जाए, गुमी हुई है, मफकूद है। तो عند فقد المتفجع عليه عدما, जिस वक्त متفجع عليه عدما न हो भाई, तर्जमा समझ में आया, फिर सुनो, कहते हैं वल متفجع عليه وجودا, متفجع عليه وجودا किसे कहते हैं, अब उसकी तफसील बयान कर रहे हैं, यानी जिसके होने की वजह से दर्दमंद हैं वो क्या चीज है। कहते हैं मा, वो चीज, يتفجع على وجوده, कि जिसके होने पर जो है गमजदा हैं, عند فقد المتفجع عليه عدما, जिस वक्त متفجع عليه عدما न हो भाई, मैयत क्या है, متفجع عليه عدما है, उसके न होने की वजह से जो मुसीबत, हसरत और अफसोस मौजूद है वो है मुतफज्जा अलैह वजूदन भाई। कल मुसीबती, जैसे कि मुसीबत है, वल हसरती और अफसोस है, वल वैली और हलाकत और सख्ती है, वैल यहां सख्ती के माने में करने, मुश्किल और सख्ती है, वल वैली लाहिकतिल नादिबी, जैसे कि वो मुसीबत, हसरत और वो सख्ती, अल्लाहिकतिल नादिबी जो मिली हुई है किसके साथ, नुदबत करने वाले के साथ, एक शख्स का इंतकाल हो गया तो उस शख्स के न होने की वजह से अब मुसीबत और हसरत और अफसोस और सख्ती मिली हुई है किसके साथ, नादिब यानी नुदबत करने वाले के साथ, यह माना है कल मुसीबती वल हसरती वल वैली लाहिकतिल नादिबी, जैसे कि वो मुसीबत, हसरत और सख्ती जो मिल गई है, जुड़ गई है नुदबत करने वाले के साथ, लिफकदिल मैयती, मैयत के न होने की वजह से, फलहद्दु शामिलुन लिक़िस्मैल मंदूबी, तो ये तारीफ शामिल है मंदूब की दोनों किस्मों को, मिस्लु या ज़ैदाह व या अमराह, देखा ये मुतफज्जा अलै अदमन है, या ज़ैदा और या अमरा, व मिसलु या हसरताह व या मुसीबताह व या वैलाह, ये मुतफज्जा अलै वजूदन है भाई। आगे देखिए वख्तुस्सल मंदूबु बिवा, और मंदूब खास है वा के साथ, वख्तुस्सल मंदूबु बिवा, और मंदूब खास है वा के साथ, किसके साथ, मुमताजन बिही अनिल मुनादा, इस हाल में कि इस वा की वजह से वो मुमताज है मुनादा से, वो खास है मुनादा के साथ भाई, वा सिर्फ मंदूब के साथ खास है, और इसी के साथ मंदूब मुमताज है, किस से? मुनादा से, क्योंकि या जो मंदूब के साथ इस्तेमाल हो रही है वो तो मुनादा के साथ भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो जो वा मंदूब के साथ इस्तेमाल हो रहा है वो मुनादा के साथ इस्तेमाल नहीं होता, तो मंदूब खास है, मुमताज है, किस से? मुनादा से। किसके साथ? वा के साथ। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वक्तु सल मंदूब भी वा मुमताजन बिही अनिल मुनादा, और मंदूब खास है वा के साथ, मुमताजन बिही अनिल मुनादा, इस हाल में कि मंदूब जो है वो मुमताज है इस वा की वजह से, अनिल मुनादा, किससे? मुनादा से मुमताज है, लिआदम दुखूलिही अलैही, इसलिए क्योंकि ये वा मुनादा पर दाखिल नहीं होता, बिखिलाफी या बखिलाफ या के, फइन्नहु मुश्तरिकुम बैनहुमा, इसलिए क्योंकि या तो दोनों में मुश्तरिक है भाई, वो मंदूब के लिए भी इस्तेमाल होती है और मुनादा के लिए भी। बात समझ में आ गई? अब जरा यह इबारत समझ लें, वक्तुस्सल मंदूबु बिवा, इख्तस्सा यख्तस्सु, ये फेल मैं पहले भी बतला चुका हूं, ये फेल लाजिम भी इस्तेमाल होता है और फेल मुतादी भी, तो इख्तस्सल मंदूब भी आप पढ़ सकते हैं, फेल मारूफ पढ़ लें और मंदूब को फाइल बना दें, और आप चाहें तो इसको फेल मुतादी बना दें और इस सूरत में फिर मजहूल पढ़ें और मंदूब को नाई फाइल बनाएं, वक्तुस्सल मंदूब भी वाह। याद रखो ये जो आगे वाह के बाद साहिब जामी ने मुमताजन भी ही निकाला, ये हाल है, ये दरअसल बतलाना ये चाहते हैं, तवज्जो से सुनो, बतलाना ये चाहते हैं कि जो उख्तुस्सा फेल आया यहां पर तजमीन है, तजमीन है फेल इम्तियाज की, यानी इसके अंदर इम्तियाज वाला फेल भी मलहूज है इसके अंदर, ये जो इख्तिसास वाला फेल यहां आया इसके अंदर इम्तियाज का फेल भी मलहूज है इसके अंदर। भाई अरबी जुबान में यूं करते हैं, बाज औकात एक फेल के अंदर दूसरे फेल का माना मलहूज होता है, एक फेल के अंदर दूसरे फेल का माना मलहूज होता है, इसको कहते हैं तजमीन, यानी एक फेल के जिमन में दूसरा फेल को लाया गया है। तो यहां उख्तुस्सा के जिमन में किसको लाया गया? इम्ताजा, इम्ताजा, यम्ताजो, इम्तियाजन, तो इसके अंदर इम्ताजा वाला फेल भी मलहूज है, और उस पर आगे आने वाला सिला दलालत करता है, जैसे यहां ये बा है, बा हर्फे जर, ये बा हर्फे जर बतला रही है कि यहां पर इम्ताजा का फेल उसका माना भी मलहूज है, उसका माना भी मलहूज है। याद रखो जब एक फेल के अंदर दूसरे फेल का माना मलहूज हो तो ये माना नहीं कि पहले फेल का माना बिल्कुल छोड़ ही दिया, पहले फेल का माना छोड़ ही दिया और उसको दूसरे फेल के माना में इस्तेमाल कर लिया, फिर तो ये मजाज बन जाएगा भाई। जैसे शेर जंगली दरिंदे के लिए वजह है, लेकिन जंगली दरिंदे को छोड़कर मैं शेर का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर लूं? बहादुर आदमी के लिए, ये तो फिर मजाज बन जाएगा। तजमीन में ऐसा नहीं होता, मजाज नहीं है। फेल का अपना माना भी मलहूज होता है, इख्तिसास का अपना माना भी यहां मलहूज है और इम्तियाज वाला माना भी यहां मलहूज है, और उस पर आगे आने वाला ये जो सिला है बा, ये दलालत कर रहा है, क्योंकि ये सिला किसके साथ आता है? इम्तियाज के साथ आता है, इम्तियाज के साथ ये बा इस्तेमाल होता है। तो जहां पर इस तरह की इबारत है, याद रखना आपको ये काम आएगा बहुत जगह भाई, जहां तजमीन होती है तो तजमीन की जब शारहीन तफसीर करते हैं तो दूसरे फेल को आगे हाल बनाकर ले आते हैं, जैसे यहां देखो मुमताजम बिही, देखो इसको हाल बनाकर ले आए, क्या ले आए? हाल बनाकर ले आए, इससे पता चला कि उख्तुस्सा के अंदर इम्तियाज वाला माना भी मलहूज है, आगे उसी से हाल बनाकर लिया, इसमें फाइल है, इसमें मफूल को ले आते हैं, या फिर कभी कभार आतफ के साथ उसको बयान करते हैं। साहिबे जामी ने तो कैसे कहा, वक्तुस्सल मंदूबु बिवा मुमताजन बिही, इस हाल में कि मंदूब मुमताज है, किसके साथ? वा के साथ। मंदूब मुमताज है यानी जुदा है, किससे? मुनादा से। मुनादा में वा नहीं लेकिन मंदूब में वा है, तो मंदूब मुमताज है किससे? मुनादा से। किसके साथ? इस वा के साथ। बात समझ में आ गई? तो ये जो मुमताजन भी ही, ये जो हाल आया, इसने आपको क्या बतलाया कि उख्तुस्सा के अंदर तजमीन है, उख्तुस्सा में। तो एक तरीका ये है कि दूसरे फेल को आगे हाल बनाकर ले आते हैं, दूसरा तरीका ये है जब तजमीन बयान करनी हो कि आतफ के साथ बयान करते हैं, वो दूसरे फेल को भी आतफ के साथ ले आते हैं, यूं कहेंगे वक्तुस्सा वम्ताज़ल मंदूबु बिवा, वख्तुस्सा वम्ताज़ल मंदूबु बिवा। देखा तरीका समझ में आया, वख्तुस्सा वम्ताज़ा बिवा। तो इस तरह इबारत ले आते हैं, तो इस तरह पता चल जाता है कि यहां तजमीन है। अब सवाल पैदा होता है कि यहां तजमीन की क्या जरूरत है, इख्तस्सा के साथ भी बा इस्तेमाल होता है। आपने हमें क्या कहा, तजमीन का पता किससे चलता है, सिले से। यह बा ने बतलाया कि उख्तुस्सा के अंदर कौन सा माना मलहूज है, इम्ताजा, इम्तियाज का माना भी इसके अंदर मलहूज है। भाई इख्तुस्सा के साथ तो खुद भी बा इस्तेमाल होती है, उख्तुस्सा के साथ खुद भी बा इस्तेमाल होती है, फिर क्या जरूरत है यह कहने की कि इसके अंदर तजमीन है और इम्तियाज का माना मलहूज है और आगे आने वाली बा उस पर दलालत कर रही है। तो याद रखना वजह यह कि उख्तुस्सा के साथ जब बा आती है तो वह बा मकसूरुन अलै पर दाखिल होती है, मकसूर पर नहीं दाखिल होती। भाई मैंने आपको बतलाया था हसर कसर तख्सीस तीनों का एक माना है, हसर हा सौदरा, कसर काफ दो नुक्तों वाला स्वाद और रा। तो हसर कसर और तख्सीस का एक माना है, और यहां पर भी इख्तस्सा वही तख्सीस वाला फेल आ गया। और याद रखो ये जो इख्तिसास का फेल है इसके साथ जब बा आती है तो बा मकसूर अले पर दाखिल होती है, मकसूर पर नहीं, और यहां ये मकसूर पर दाखिल है। इधर देखिए, एक है मंदूब एक है वाह, मंदूब खास है वाह के साथ या वाह खास है मंदूब के साथ, वाह खास है मंदूब के साथ, वो मुनादा में इस्तेमाल नहीं होती। मंदूब वाह के साथ खास नहीं है, मंदूब के अंदर तो या भी इस्तेमाल होती है, तो कौन किसके साथ खास है, वाह खास है मंदूब। मालूम हुआ बंद किसको किया गया, वाह को, किसके अंदर, मंदूब के अंदर। मालूम हुआ वाह है मकसूर, इसको बंद किया गया है, कसर स्वाद के साथ है मकसूर, और मंदूब है मकसूरुन अलै, किसको बंद किया, वाह को, किस में, तो वाह क्या हुई मकसूर और मंदूब क्या हुआ मकसूरुन अलै। और ये बा किस पर दाखिल होती है, मकसूरुन अलै पर, किस पर, लेकिन यहां तो ये वाह पर दाखिल है और वाह तो मकसूर है, वाह तो मकसूर है। इबारत अगर यूं होती ना, वख्तुस्सा वाह बिल मंदूबी, वख्तुस्सा वाह बिल मंद, वाह खास है मंदूब के साथ, फिर तो इबारत पर कोई इश्काल ही नहीं था, फिर तजमीन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहां पर वाह को किस पर दाखिल किया गया, मकसूर पर दाखिल कर दिया गया, हालांकि जब इख्तस्सा के साथ बा आए तो वह हमेशा किस पर दाखिल होती है, मकसूर अले पर दाखिल होती है। लिहाजा इस वजह से अब यहां पर यह तावील करना पड़ी कि यहां तजमीन है भाई, या यह जवाब भी दिया जा सकता है कि यहां कल्ब हुआ है। क्या हुआ है, अरबी जुबान में कभी कल्ब किया जाता है, फाइल को उठाकर मफूल की जगह ले जाते हैं और मफूल को उठाकर फाइल की जगह पर ले आते हैं, वहां कोई नुक्ता मलहूज होता है उसकी वजह से कल्ब किया जाता है। तो मकसूरुन आलय को उठाकर मकसूर की जगह ले गए और मकसूर को उठाकर मकसूरुन आलय की जगह ले गए, तो इसमें कोई नुक्ता हो भाई, बात समझ में आ गई। तो कल्ब की सूरत में भी ऐसा किया जाता है भाई। तो बहरहाल यहां तजमीन है भाई। तो कहते हैं वक्तुस्सल मंदूबु भी वाह, और खास है मंदूब वाह के साथ, मुमताजन भी अनिल मुनादा, इस हाल में कि मंदूब जो है वो मुमताज है मुनादा से, लिआदमी दुखूलिही अलैही, इसलिए क्योंकि ये जो वाह है ये मुनादा पर दाखिल नहीं होता, बिखिलाफ या के फैन न हो मुश्तरिकुम बैनहुमा, क्योंकि या तो दोनों के दरमियान मुश्तरिक है यानी मंदूब और मुनादा में। वह हुक्मुहु ऐ हुक्मुल मंदूब फिल इआराबि वल बिनाइ हुक्मुल मुनादा, वहुक्मुहु ऐ हुक्मुल मंदूबी, शारह जामी क्या बतलाना चाहते हैं, जमीर का मर्जिया बतलाना चाहते हैं कि हुक्मुहु की हा जमीर किसको राजे, मंदूब को। कहते हैं वहुक्मुहु ऐ हुक्मुल मंदूबी, मंदूब का हुक्म जो है फिल इराबी वल बिनाई, मुआरब और मबनी होने में हुक्मुल मुनादा, वो मुनादा का हुक्म है। आगे साहिब जामी फरमा रहे ऐ मिसलो हुक्म ही, मतन में तो आया था हुक्मुल मुनादा और शरा में क्या फरमाया ऐ मिसलो हुक्म ही, हा जमीर की जगह जरा मुनादा ले आओ, मिसलो हुक्मिल मुनादा, मतन में क्या था हुक्मुल मुनादा और शरा में क्या है मिसलो हुक्मिल मुनादा। तो ये मिसल का लफ्ज दरमियान में शारह जामी ने बढ़ा दिया, बतलाना ये चाहते हैं कि यहां तशबीह बलीग है, यहां तशबीह बलीग है। याद रखो बाज़ औक़ात एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जाती है, जैसे मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन कल असदी, जैद शेर जैसा है, तो जैद हुआ मुशब्बा और काफ हुआ हरफे तशबी और असद हुआ मुशब्बा भी ही जिसके साथ तशबी दी गई। तो ये आम तशबी है जिसके अंदर कोई ना कोई अदाते तशबी इस्तेमाल होते हैं, कोई ऐसा लफ्ज जो तशबी के पर दलालत कर रहा होता है, जैसे जैदुन कल असदी, यहां मैं काफ लेकर आया। लेकिन कभी कभार ऐसा किया जाता है कि ये अदाते तशबी जो है यानी हरफे तशबी वगैरह है इसको खत्म कर देते हैं इबारत से और सीधा मुशब्बा भी का हमल कर देते हैं मुशब्बा पर और यूं कहते हैं जैदुन असदुन, जैदुन जैद शेर है। भाई देखो एक था जैद शेर जैसा है, इससे भी पता चला जैद बड़ा बहादुर है, और जब एक ये कहा जैद शेर है, देखो इसमें मुबालगा आ गया, मालूम हुआ शेर जैसा नहीं, खुद ही क्या है शेर है भाई। तो इसको तशबीह बलीग कहते हैं जिसमें हरफे तशबी अदाते तशबी जो है उसको हजफ कर लिया जाता है। तो यहां पर भी क्या कहा कि मंदूब का हुक्म मुनादा का हुक्म है। साहिब जामी ने बतलाया कि यह तशबीह बलीग है, मंदूब का हुक्म मुनादा के हुक्म जैसा है भाई, यहां मिसल का लफ्ज़ महजूफ है। वजह यह कि एक चीज का हुक्म उसी के साथ खास होता है, दूसरे में नहीं हो सकता। भाई जो मंदूब का हुक्म है वो तो मंदूब के साथ रहेगा, जो मुनादा को हुक्म है वो मुनादा के साथ खास रहेगा, क्योंकि हुक्म उसकी सिफत है, सिफत और मौसूफ से जुदा नहीं होती। जैद सखी आदमी है, यह सखावत जैद से जुदा नहीं हो सकती, यह सखावत जैद की सिफत है। बकर भी अगर सखी है तो वह उसकी अपनी अलग सिफत है भाई, तो सिफत मौसूफ से जुदा नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब कहा कि जो मंदूब का हुक्म है वो मुनादा का हुक्म है, भाई ये कैसे हो सकता है, मंदूब का हुक्म मुनादा का हुक्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बतला दिया यहां तशबीह मकसूद है कि मंदूब का हुक्म मुनादा के हुक्म जैसा है भाई। ऐ मिस्लु हुक्मिही यानी इदा वकाल मंदूबु अला सूरति किस्म मिन अकसामिल मुनादा, यानी जब मंदूब वाके हो अला सूरति किस्म मिन अकसामिल मुनादा, मुनादा की अकसाम में से किसी किस्म की सूरत पर जब मंदूब वाके हो। मुनादा की जो अकसाम है उन अकसाम में से किसी किस्म की सूरत पर कौन वाके हो जाए, मंदूब, तो उसका भी वही मुनादा जैसा हुक्म होगा। मुनादा वाला हुक्म नहीं होगा, मुनादा का तो अपना हुक्म उसके साथ है, हां मुनादा जैसा हुक्म होगा। तो कहते हैं यानी इदा वकाल मंदूबु अला सूरति किस्म मिन अकसामिल मुनादा, तर्जमा सुनो भाई गौर से, मुश्किल है। इदा वकाल मंदूबु, जब मंदूब वाके हो अला सूरति किस्म मिन अकसामिल मुनादा, तर्जमा आखिर से होगा, मुनादा की अकसाम में से किसी किस्म की सूरत पर, जब मंदूब वाके हो मुनादा की अकसाम में से किसी किस्म की सूरत पर जब मंदूब वाके हो, फहुक्मुहु फिल इराबि वल बिनाई मिस्लु हुक्मि जालिकल किस्म मिनल मुनादा, तो उस मंदूब का हुक्म मौरब और मबनी होने में वो मिसल है उसी किस्म, वही जो किस्म है मुनादा की उसी के मिसल इसका हुक्म भी होगा। कमा इदा काना मुफरदन मारिफतन युजम्मु, जैसे कि मंदूब जब मुफरद मारिफा हो तो युजम्मु, तो वो मजमूम होगा। व इदा काना मुजाफन औ मुशब्बहन बिही युनसबु, और जैसे मंदूब जो है अगर वो मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हुआ तो यून सबू, तो वो मंसूब होगा। वला यल्जमु मिन सालिका, इधर देखिए मैंने बताया कि नकेराए गैर मुआयन भी मुनादा बनता है, नकेराए, लेकिन नकेरा जो है वो मंदूब नहीं बनता, क्योंकि उस पर इजहार गम किया जा रहा है, रोया जा रहा है, तो कोई मालूम होना चाहिए, गैर मालूम नहीं होना चाहिए। तो मालूम हुआ नकेरे गैर मुआयना मंदूब नहीं बनता। साहिब जामी आपको आगे बतलाएंगे कि साहिब काफिया ने क्या कहा, मंदूब का हुक्म मुनादा की तरह है। इससे इतना तो पता चल गया कि मंदूब का भी वही हुक्म जो मुनादा का, लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि जितनी किस्में मुनादा की होंगी वो सारी किस्में मंदूब में भी पाई जाएंगी, क्योंकि हम क्या कहा साहिब काफिया ने कि मंदूब का हुक्म मुनादा जैसा है, मंदूब की किस्में मुनादा जैसी हैं, ये तो साहिब काफिया ने नहीं कहा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला यल्जमु मिन ज़ालिका जवाज़ु वुकूइहि अला सूरति जमीउ अक़सामिल मुनादा, और इससे ये बात लाजिम नहीं आती कि जायज है मंदूब का वाक़े होना अला सूरति जमीउ अक़सामिल मुनादा, मुनादा की तमाम अक़साम की सूरतों पर। इससे यह लाजिम नहीं आता कि मंदूब जो है मुनादा की तमाम अकसाम की सूरतों पर वाकई होता है, तमाम अकसाम की सूरतों पर मंदूब नहीं आता, बल्कि नकिरा गैर मुअय्यना वाली सूरत इससे खारिज है भाई, मंदूब उस सूरत पर नहीं आता। जो कहते हैं वला यलज़मु मिन ज़ालिका जवाज़ु वुकूइही, और इससे लाजिम नहीं आता कि मंदूब का वाक़े होना जायज है, अला सूरति जमी अकसामिल मुनादा, मुनादा की तमाम अकसाम की सूरतों पर, लियरिदा अलैही, ताकि इस पर यह एतराज वारिद हो, अन्नहु ला यक़ऊ नकिरतन, के मंदूब तो नकिरा वाक़े नहीं होता, लिअन्नहु ला युंदबु इल्लल मारिफतु, इसलिए क्योंकि मंदूब नहीं होता मगर मारिफा ही। कहते हैं ये जो मातिन ने साहिब काफिया ने कहा ना, मंदूब का वही हुक्म है जो मुनादा का है, इससे यह लाजिम नहीं आता कि मंदूब की वो तमाम सूरतें होंगी जो किसके अंदर थी, मुनादा के अंदर, बल्कि मंदूब मुनादा की जिस शक्ल पर भी आएगा, पहले यह देखेंगे कि एक चीज मंदूब बन भी सकती है या नहीं, जब एक चीज मंदूब बन सकती है तो फिर उसका हुक्म वही होगा जो मुनादा का हुक्म था, लेकिन अगर एक नकिरा गैर मुअय्यन है वो तो मंदूब बन ही नहीं सकता भाई, तो वो इश्काल यहां आप नहीं कर सकते भाई। बात समझ में आ गई कि आपने हमें क्या कहा कि मंदूब का वही हुक्म है जो मुनादा का है, हालांकि मंदूब तो नकिरा गैर मुअय्यन नहीं होता और मुनादा तो नकिरा गैर मुअय्यन होता है। कहते नहीं, ये एतराज नहीं, हुक्म मंदूब का मुनादा जैसा है, किस्में मुनादा जैसी होना जरूरी नहीं। हां, मंदूब जब भी जिस शक्ल में भी आए उसका हुक्म मुनादा की वही सूरत देख ली जाए और उसके मुताबिक वो हुक्म उस पर लगा दिया जाए। इबारत भी समझ में आई कि नहीं? फिर देखें, लियरिदा अलैही, ताकि उस पर एतराज हो, इसको जोड़ें वला यलजमु जो पीछे आया, कि ये चीज लाजिम नहीं आती कि ताकि फिर एतराज भी हो जाए। कौन सी चीज लाजिम नहीं आती? कि मंदूब मुनादा की तमाम सूरतों पर आता हो, यह लाजिम नहीं आता कि लिया रिदा अलैही, कि ताकि उस पर फिर यह एतराज वारिद हो कि अन्नहु ला यक़ऊ नकिरतन, के मंदूब तो नकिरा वाक़े नहीं होता। इबारत समझ में आ गई? आगे देखिए, कहते हैं वजाज़ लका ज़ियादतुल अलिफ फी आखिरिही ऐ आखिरिल मंदूबी, और आपके लिए जायज है अलिफ को ज्यादा करना फी आखिरी ही ऐ आखिरिल मंदूबी, मंदूब के आखिर में, लिमद्द सौत इल मतलूबी फिन नुदबती, लिमद्द सौत, मद्द उनका माना है लंबा करना, खींचना, सौत उन आवाज को कहते हैं, लिमद्द सौत इल मतलूबी फिन नुदबती, ताकि आवाज लंबी हो जाए जो कि मतलूब होती है नुदबत में, ताकि आवाज क्या हो जाए, लंबी हो जाए जो मतलूब होती है नुदबत में, क्योंकि नुदबत के अंदर इजहारे गम किया जा रहा है, तो लिहाजा इंसान चाहता है कि आवाज जरा लंबी हो जाए, तो लिहाजा अलिफ का मिलाना भी जायज है। तो कहते हैं लिमद सौतिल मतलूबी फिन नुदबती, ताकि आवाज लंबी हो जाए जो कि मतलूब है नुदबत के अंदर, फइन खिफ्त लबसा, अगर आपको इल्तिबास का खौफ है, ऐ इल्तिबास ज़ालिकल लफ्ज़ इंदा ज़ियादतिल अलिफ़ बिग़ैरिही, यानी उस लफ्ज़ का इल्तिबास इंदा ज़ियादतिल अलिफ़ अलिफ की ज्यादती के वक्त, बिग़ैरिही ऐ बिग़ैरिल मंदूबी, अगर आपको यह खौफ है कि इस लफ्ज़ का इल्तिबास लाजिम आएगा जब हम अलिफ को बढ़ा देंगे, बिग़ैरिही ऐ बिग़ैरिल मंदूबी, किसके साथ इल्तिबास लाजिम आएगा, गैर मंदूब के साथ, तो कहते हैं अफइन खिफ्ता लफ्सा अ इल्तिबास ज़ालिकल लफ्ज़ इंदा ज़ियादतिल अलिफ बिग़ैरिही, यानी अगर आपको खौफ हो इल्तिबास का उस लफ्ज के, किस लफ्ज का इश्तिबा लाजिम आएगा, इंदा ज़ियादतिल अलिफ अलिफ के ज्यादा करते वक्त, बिग़ैरिही गैर मंदूब के साथ, अदलता इला हर्फ मद मुजानिसिन लिहरकति आखिरिल मंदूब मिन कसरतिन औ ज़म्मतिन, तो अदलता, तो आप उदूल करेंगे, रुजू करेंगे, इला हर्फ मद्दिन, ऐसे हर्फ मद्दा की तरफ, मुजानिसिन लिहरकति आखिरिल मंदूबी, जो हम जिंस होगी मंदूब की आखिर की हरकत की, मंदूब के आखिर में जो हरकत आ रही है उसके हम जिंस जो हर्फ मद होगा उसकी तरफ आप पलट जाएंगे, मिन कसरतिन औ जम्मतिन, यानी कसरा या जम्मा की तरफ, कमा इदा अरत्ता नुदबता गुलामी मुखातबतिन, जैसे आपने इरादा किया मुखातबा के गुलाम की नुदबत का, यानी मुअन्नस है उसका गुलाम है उस पर नुदबत करना चाहते हैं, कुलता, तो आप कहेंगे वा गुलाम की, ला वा गुलामकाह, यूं नहीं कहेंगे, अलिफ नहीं लाएंगे। क्यों? लिल्तिबास ही बिनुदबती गुलामी मुखातबिन, इसलिए क्योंकि इस सूरत में इसका इल्तिबास लाजिम आएगा मुखातब के गुलाम की नुदबत के साथ। हालांकि तो मुखातब के गुलाम पर नुतबत नहीं है, बल्कि मुखातबा के गुलाम पर नुतबत मकसूद है। वह ईदा अरत नुदबत गुलामी जमातिम मुखातिबीन कुलता, और जब आपका इरादा हो कि एक ऐसी जमात के गुलाम पर नुदबत करें मुखातबीना, जो मुखातबीन की है, मुखातबीन की एक जमात के गुलाम पर अगर आपका नुदबत का इरादा है। तर्जमा समझ में आया? वह ईदा अरत नुदबत गुलामी जमातिम मुखातबीना, और जब आपका इरादा हो कि आप एक जमात मुखातबीन के गुलाम की नुदबत करें, कुलता, तो आप कहेंगे वा गुलाम कुमूह। यहां मीम पर फतहा पढ़ना, क्योंकि ये मुजाफ है भाई, तो ये मंसूब होगा। वा गुलाम कुमूह, तो यहां देखो वो बढ़ाया, तो सवाल पैदा हुआ जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वो क्यों बढ़ाया। गुलामकुम, इसके अंदर तो मीम साकिन था, मैंने बतलाया कि ये मीम असल में मजमूम था। तो कहते हैं इजिल मीम असलुहु जम्मो, इसलिए क्योंकि ये जो मीम है इसकी असल जम्मा है, यानी ये साकिन नहीं है, असल में इस पर जम्मा है, और जम्मे के मुनासिब वाव था तो वाव यहां बढ़ा दिया। ला वा गुलामकुमाह, अलिफ नहीं बढ़ाएंगे यहां पर, यूं नहीं कहेंगे लिल्तिबास ही बिनुदबती गुलामी मुखातबैन इस्नैनी, इसलिए क्योंकि इसका इल्तिबास लाजिम आता है दो मुखातबों के गुलाम की नुदबत के साथ। गुलाम को मुंह कहा तो पता चला जमा मुखातब का गुलाम है, और अगर अलिफ बढ़ाएंगे तो फिर तो वा गुलाम को माह, यूं मालूम होगा गोया दो मुखातब हैं उनके गुलाम पर नुदबत की जा रही है। और यहां एक कीमती नुक्ता याद रखना भाई, ये जो मिसाल है ना वा गुलाम की और वा गुलाम को मुंह, इस किस्म की मिसालों से साहिबे काफिया के मजहब की ताइद होती है। तवज्जो है, कीमती नुक्ता भाई याद रखना, इस किस्म की मिसालों से साहिबे काफिया के मजहब की ताइद होती है। साहिबे काफिया ने क्या कहा था कि मंदूब मुनादा में दाखिल नहीं, क्योंकि मुनादा उसको कहते हैं जिसकी तवज्जो मतलूब होती है, और मंदूब वो तो मर चुका है, उसकी तवज्जो मतलूब नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर इजहार गम किया जा रहा है, या जैदु या वा जैदु, सिर्फ उस पर इजहारे गम किया जा रहा है, उसकी तवज्जो मतलूब नहीं है भाई। और ये जो मिसालें हैं वा गुलाम की और वा गुलाम कुमूह, इस किस्म की मिसालों से साहिबे काफिया के मजहब की ताइद होती है। भाई किस तरह ताइद होती है? भाई देखिए, वा गुलाम की, इसमें गुलाम जो है इसकी इजाफत हो रही है मुखातबा की जमीर की तरफ। किसकी तरफ? मुखातबा की जमीर की तरफ। मालूम हुआ मंदूब की इजाफत मुखातब की जमीर की तरफ जायज है। वा गुलाम की, वा गुलाम का, वा गुलाम कुमा, वा गुलाम कुम, ये सब जायज हैं। यानी मंदूब की इजाफत की जाए किसकी तरफ? मुखातब की जमीर की तरफ की जाए, चाहे मुजक्कर की जमीर हो, चाहे मुअन्नस की हो, चाहे मुफरद हो, चाहे तस्निया हो, चाहे जमा, उसकी तरफ मंदूब की इजाफत जायज है। जबकि मुनादा की इजाफत इस तरह जायज नहीं है। आप किसी गुलाम को आवाज देना चाहते हैं और यूं कहते हैं या गुलाम का या गुलाम की, नहीं कह सकते भाई। वजह यह कि अगर आप यूं कहें या गुलाम की, तो गुलाम क्या है? मुनादा। तवज्जो है, ये मुनादा है और मुनादा मुखातब होता है। तो या गुलाम की, या ने बतलाया कि गुलाम मुखातब है, और आगे गुलाम की इजाफत काफ जमीर की तरफ हो रही है जो कि मुजाफिले है, और काफ जमीर मुखातब वाली है, तो इससे तो पता चल रहा कि जो मुजाफिले है ये मुखातब है भाई। इससे क्या पता चला? मुजाफिले मुखातब है, और यह नहीं हो सकता कि मुजाफ और मुजाफिले दोनों मुखातब हो जाएं भाई। यह नहीं हो सकता कि मुजाफ और मुजाफिले दोनों मुखातब हो जाएं, यह नहीं हो सकता। मुखातब सिर्फ एक होगा एक वक्त के अंदर। तो जब निदा में आप या गुलाम की कहें, तो गुलाम भी गोया मुखातब बन गया जो मुजाफ है, और काफ जमीर भी खिताब वाली है, मालूम है मुजाफिले भी मुखातब है, हालांकि यह जायज नहीं। अगर आप दो या ज्यादा को निदा देना चाहते हैं तो फिर मुजाह मुजाफिले की सूरत में आप नहीं ला सकते। मसलन आप जैद के गुलाम को भी निदा देना चाहते हैं और जैद को भी निदा देना चाहते हैं, तो फिर आपको या तो तस्निया का कोई सीगा लाना पड़ेगा अगर दोनों के लिए एक ही लफ्ज हो। मसलन या रजुलानी, देखा तस्निया का सीगा लाना पड़ेगा, और अगर दो से ज्यादा है तो जमा लाना पड़ेगा या रिजालो, या आतफ के जरिए लाना पड़ेगा या गुलाम अजैदिन वजैदु, या गुलाम अजैदिन वजैदु। देखो जैद को अलग जो है जिक्र करना पड़ेगा आतफ की सूरत में। तो मुनादा अगर मुजाफ और मुजाफिले दोनों को आप बनाना चाहते हैं यह जायज नहीं है भाई, या तो फिर तस्निया या जमा वगैरह का कोई सीगा लाओ या आतफ की सूरत में अलग अलग जिक्र करो। मालूम हुआ निदा की सूरत में या गुलाम का कहना जायज नहीं है, क्योंकि दोनों मुखातब हैं, दोनों मुखातब हैं। जबकि मंदूब जो है उसमें आप कह सकते हैं या गुलाम का या गुलाम की, ये कह सकते हैं, और ये दलील है इस बात की कि ये गुलाम इसकी तवज्जो मतलूब नहीं, ये जो गुलाम है इसकी तवज्जो मतलूब नहीं। अगर इसकी तवज्जो भी मतलूब होती तो मालूम हो वो भी मुखातब है, और आगे काफ जमीर भी क्या है, मुखातब है, वो तो जायज ही नहीं था भाई। तो जब मंदूब के अंदर या गुलाम की कह सकते हैं, इससे पता चला कि मुजाफ जो है उस पर सिर्फ इजहार गम किया जा रहा है, उसकी तवज्जो मतलूब नहीं, इसीलिए उसके साथ मुखातब की जमीर जोड़ना जायज है, क्योंकि वह मुखातब ही नहीं है। गुलाम या गुलाम की अगर मुनादा होता तो मालूम हुआ गुलाम भी मुखातब है और आगे मुजाफिले भी मुखातब है, क्योंकि वो मुखातब की जमीर है, लेकिन मंदूब के अंदर ये जायज है। इससे क्या पता चला, मालूम हुआ जो मंदूब मुजाफ है, जो मालूम हुआ उसकी तवज्जो नहीं मतलूब, अगर उसकी तवज्जो मतलूब होती फिर तो ये जायज ही ना होता, उस पर सिर्फ इजहार गम किया जा रहा है। या गुलाम की, बात समझ में आ गई, मालूम हुआ मुखातबा वो जो मुअन्नस मुखातबा औरत वो मुखातबा है, गुलाम मुखातब नहीं है, उस पर सिर्फ इजहार गम किया जा रहा है। बात समझ भी आई कि नहीं? तो मुनादा के अंदर मुखातब की जमीर की तरफ इजाफत जायज नहीं, जबकि मंदूब के अंदर जायज है। इससे पता चला कि जो मुजाफ होता है मंदूब के अंदर उसकी तवज्जो मतलूब नहीं होती, मालूम हुआ वो मुनादा नहीं, इसीलिए साहिब काफिया ने उसको मुनादा होने से निकाल दिया था और फरमाया था कि ये मुनादा है ही नहीं, ना हकीकतन मुनादा है और ना हुक्मन मुनादा है। ये जो या जैदू उस पर कहा जा रहा है यह सिर्फ इजहार गम किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। वजाज अलकल हाउ, और आपके लिए हा भी जायज है, ऐ इल्हाकुहा, यानी हा का मिलाना, बिहादिहिल मद्दाती, ये जो मद आए हैं, ये जो मद आए अलिफ वाव और या, इनके साथ हा का मिलाना भी आपके लिए जायज है। जैसे इन्होंने मिलाया भी, वा गुलाम की, देखो हा मिलाई, वा गुलाम को मुंह, यहां भी हा मिलाई। तो कहते हैं वजाज अलकल हाउ ऐ इल्हाकुहा बिहादिहिल मद्दाती, और आपके लिए हा का मिलाना भी जायज है इन मद्दों के साथ, फी हालिल वक्फी, वक्फ की हालत में, लि बयानिहा, उन मद्दों को बयान करने के लिए, उन मद्दों को बयान करने के लिए। भाई जब हा साथ मिलेगी ना तो मद खूब वाजे हो जाएगा, कामिल तौर पर वाजे हो जाएगा, तवज्जो है। अगर हा साथ नहीं जोड़ेंगे तो मद, वो तो आवाज थोड़ी लंबी करता है या ज्यादा लंबी करेगा, इंसान थोड़ी लंबी करेगा तो किसी को ज्यादा पता नहीं चलेगा, हां ज्यादा लंबी मद करेगा फिर तो लोगों को पता चल जाएगा, तवज्जो है। ज्यादा आवाज को लंबा करेंगे फिर तो लोगों को मद का पता चलेगा, और अगर ज्यादा लंबा ना किया फिर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हा साथ जोड़ देंगे अब मद खूब वाजे हो जाएगा। तो ये माना है ली बयानी हा, हा समीर राज है, ये जो मद्दात पीछे आए, उन मद्दों को बयान करने के लिए, ताकि वो कामिल तौर पर बयान उनका हो जाए, वो वाजे हो जाए। वला युंदबु मिन किस्मिल मंदूबिल मुतफज्जा अलैहि अदमन इल्ला लिस्मुल मारूफु, और नुदबत नहीं की जाती, और नुदबत नहीं की जाती मीनल किस्मिल मंदूबी, बतलाना चाहते हैं यहां नुदबत से मुराद उस किस्म पर नुदबत है जो मुतफज्जा अले आदमन है, मुतफज्जा अले आदमन है, जिसके न होने पर गमजदा हो रहे हैं, वो मारूफ होना चाहिए, वो मारूफ होना चाहिए, गैर मुअय्यन नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वला युंदबु मिन किस्मिल मंदूबिल मुतफज्जई अलैहि अदमन, और नुदबत नहीं की जाएगी मंदूब की उस किस्म के अंदर जो मुतफज्जा अलै अदमन है, उसमें नुदबत नहीं की जाएगी। इल्लल इस्मुल मारूफ, मगर वो इस्म जो मारूफ हो, जिसको यानी लोगों को पता हो। अल्लदिश्तहर अल मंदूब बिही, जिसके साथ मंदूब मशहूर है। मंदूब मसलन एक आदमी पर नुदबत की जा रही है तो या तो उसका नाम होगा या जईदा, इससे भी लोगों को पता चल जाएगा, या ऐसा इसम जिसके साथ वो मारूफ है, लोगों को उसका पता है। मसलन या तालेअन जबलन, अब लोगों को पता है कि ये शख्स जो है सबसे बढ़कर पहाड़ों पर चढ़ता था। बात समझ में आ गई? तो या तो नाम हो, नाम से भी लोग जानते हैं, और या ऐसी सिफत हो जिसके साथ वो मंदूब मशहूर हो। भाई तो कहते हैं इल्लल इस्मुल मारूफ, मगर ऐसे इसम के साथ जो मारूफ हो। अल्लज़ी इश्तहरा अल मंदूबु बिही, यानी जिसके साथ मंदूब मशहूर है। लियुअज़्ज़रन नादिबु, ताकि नुदबत करने वाले को माजूर समझा जाए। बिमारिफतिही, उस मंदूब को जानने की वजह से। उस मंदूब को जब लोग जान लेंगे, भाई जब ऐसे नाम के साथ जिक्र करेगा जिसे मशहूर है और लोग उसको जानते हैं, तो अब लोग इस रोने वाले को माजूर समझेंगे कि वाकई ये आदमी रोने के अंदर माजूर है, इतना बड़ा आदमी गया है तो इसको रोना ही चाहिए भाई, इसका रोना बनता है भाई। लियो अजारा नादिबु भी मारिफती ही, ताकि माजूर समझा जाए नुदबत करने वाले को। भी मारिफती ही, उस मंदूब को जानने की वजह से। लोग उस मंदूब को जानने की वजह से इस नादिब को माजूर समझे। तो मारिफत से किसकी मारिफत मुराद है? लोगों की, लोगों की। लियो अजरन नादिबु बिमारिफती ही, ताकि उस नुदबत करने वाले को माजूर समझा जाए। बिमारिफती ही, उस मंदूब को जानने की वजह से। तो उस नादिब को माजूर समझा जाए किस चीज में? फी नुदबती ही व तफज्जुई अलैही, उसके नुदबत में यानी उसके रोने में। व तफज्जुई अलैही, और उसके दुखी होने में भाई, उसको माजूर समझा जाए भाई। फला युकालू वारजुलाह, लिहाजा वारजुलाह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वारजुला रजुल के साथ तो कोई खास आदमी जहन में नहीं आता भाई। इज मश्तहरा बिहादल लफ्ज मंदूबुन खासुन, इसलिए क्योंकि इस लफ्ज के साथ मशहूर नहीं है कोई ऐसा खास मंदूब। इंतकला ज़हनु इलैही, कि जिसकी तरफ ज़हन मुंतकिल हो जाए। व युअरफु बिही, और उसको जान लिया जाए। रजुल के साथ कोई खास मंदूब मशहूर नहीं है कि जहन उसकी तरह मुंतकिल हो जाए और इंसान पहचान ले कि ये किस पर रो रहा है। लियो जरा नादिबु बिन नुदबति अलैही, ताकि नुदबत करने वाले को माजूर समझा जाए उस पर नुदबत से। तर्जमा भी समझ में आ रहा है? नहीं। वमतना इल्हाकुल अलिफीन, देखिए भाई आगे जरा मतन मतन देखिए। कहते हैं वमतना मिसलु वाज़ैदु तवीला खिलाफन लियूनुस जी, यहां से ये बतला रहे हैं कि अभी हमने आपको बतलाया मंदूब के साथ अलिफ बढ़ा सकते हैं। अगर मंदूब के साथ आप सिफत ले आए हैं तो फिर वो जो अलिफ आप बढ़ाना चाहते हैं वो सिफत के आखिर में नहीं बढ़ाएंगे बल्कि मंदूब के आखिर में बढ़ाएंगे। लिहाजा जैद है मंदूब और अत्तवील उसकी सिफत है, तो कैसे कहेंगे? या जईदाहु तवीलो, बात समझ में आ? या जईदाहु तवीलो, देखो अलिफ कहां बढ़ाया? मंदूब के साथ, सिफत के साथ नहीं बढ़ा सकते। यूं नहीं कह सकते आप या जैदुत तवीलाह, सिफत के आखिर में अलिफ बढ़ा दें। तो जमहूर नखवियों के नजदीक मंदूब की अगर सिफत लाई जाए और आप अलिफ बढ़ाना चाहते हैं तो मंदूब के साथ अलिफ बढ़ाएंगे, सिफत के साथ अलिफ नहीं बढ़ाएंगे। जबकि इसके बरअक्स अगर मंदूब मुजाफ है, मंदूब मुजाफ है और आप अलिफ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मुजाफ के साथ अलिफ नहीं बढ़ाएंगे बल्कि मुजाफिले के साथ अलिफ बढ़ाएंगे। जैसे अमीरुल मोमिनीन, अमीर मुजाफ अल मोमिनीन मुजाफोन इले, अब आप उस पर नुदबत करते हैं या अमीर अल मोमिनीनाह, देखो मुजाफिले के आखिर में अलिफ बढ़ाया। सिफत अगर होती तो सिफत से पहले अलिफ बढ़ाना था, और मुजाफिले आगे आए तो मुजाफिले के आखिर में अलिफ बढ़ाएंगे। وجہ یہ کہ مضاف کا اتصال بڑا شدید ہوتا ہے مضافن الیہ کے ساتھ، حتیٰ کہ مضاف کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ مضاف الیہ نہیں ملائیں گے. میں نے کہا غلام، کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا؟ میں نے کہا غلام، صرف کیا کہا؟ کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا؟ نہیں، مطلق غلام آپ کے ذہن میں آیا. جب تک غلام مضاف کے ساتھ میں مضاف الیہ نہیں جوڑوں گا، وہ خاص غلام آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو جب میں کہوں گا غلام زیدن، اب آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا. تو مضاف کے ساتھ جب تک مضاف الیہ نہیں جوڑیں گے، یہ دلالت نہیں کرے گا اس چیز پر. تو مضاف کے ساتھ مضاف الیہ کا بڑا شدید اتصال، اور مضاف الیہ کے بغیر مضاف کا معنی پورا نہیں ہوتا. لہذا ندبت میں اگر آپ الف بڑھانا چاہتے ہیں تو مضاف الیہ کے بعد بڑھائیں گے، جبکہ صفت کا موصوف کے ساتھ اتصال اتنا شدید نہیں ہوتا. صفت کا بھائی مضاف کا تو معنی ہی پورا نہیں ہو رہا تھا مضاف الیہ کے بغیر، لیکن صفت، صفت میں موصوف کا معنی پہلے ہی پورا ہے. صفت آ کر صرف اس میں تخصیص پیدا کرتی ہے یا اس کی توضیح کرتی ہے. بھئی آپ نے پڑھا ہے نکرہ کے اندر اگر صفت آئے تو یاد رکھو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. کس میں؟ غلام، یہ نکرہ ہے، میں اس کی صفت لے آتا ہوں، غلام مؤمن. تو اس سے دیکھو اس میں تخصیص آ گئی، کافر غلام اس سے نکل گئے، بھئی غیر مومن غلام اس سے نکل گئے، تخصیص آئی. تو نکرہ کی صفت جو لائی جاتی ہے وہ تخصیص کے لیے، وہ اس میں احتمالات کم کر دیتی ہے، جبکہ معرفہ میں صفت توضیح کے لیے لائی جاتی ہے. مثلا زید تاجر، وہ زید جو تاجر ہے، زید موصوف، التاجر اس کی صفت، اور زید معرفہ ہے، اور یہ صفت توضیح کے لیے ہے کیونکہ معرفہ کی صفت ہے. توضیح کا کیا معنی؟ یعنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے. زید کے اندر تاجر ہونے کا بھی احتمال تھا اور تاجر نہ ہونے کا بھی احتمال تھا، تو جب میں نے التاجر صفت ذکر کر دی تو تاجر نہ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا. تو توضیح کا کیا معنی؟ غیر کے احتمال کو ختم کرنا. تو صفت نکرہ میں لائی جاتی ہے تخصیص کے لیے، اور معرفہ میں لائی جاتی ہے توضیح کے لیے. توضیح کا کیا معنی؟ اس سے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے. تو موصوف کا معنی پہلے ہی پورا ہوتا ہے، توجہ ہے، صفت آ کر صرف اس میں تخصیص پیدا کرتی ہے یا توضیح کرتی ہے، جبکہ مضاف کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا جب تک مضاف الیہ نہ آ جائے. تو معلوم ہوا کس میں اتصال شدید ہے، مضاف اور مضاف الیہ میں یا موصوف صفت میں؟ مضاف مضاف الیہ میں، کیونکہ مضاف کا معنی ہی پورا نہیں جب تک مضاف الیہ نہیں جڑے گا، اور صفت موصوف میں اس درجے کا اتصال نہیں ہے کیونکہ موصوف کا معنی پہلے ہی پورا ہو چکا ہے. صفت آ کر صرف اس میں تخصیص پیدا کرے گی یا توضیح کرے گی. لہذا جب الف کو بڑھانا ہو تو کہاں بڑھائیں گے؟ اگر موصوف صفت ہو تو موصوف کے آخر میں الف ندبت بڑھائیں گے، اور اگر مضاف مضاف الیہ ہو تو مضاف الیہ کے آخر میں بڑھائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا کہتے ہیں، وامتنع مثل وا زید الطویلہ، لہذا وا زید الطویلہ کہنا ممتنع ہے، خلافا لیونس، بخلاف یونس نحوی کے، یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں. وہ فرماتے نہیں، صفت کے آخر میں بھی الف بڑھا سکتے ہو. وہ کہتے ہیں یا زید الطویلہ کہہ سکتے ہو. جمہور تو کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو، جب مضاف الیہ کے آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں، ان کی دلیل سنو، اور ان علماء پر اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. بھائی عجیب عجیب دلیلیں ہیں، بھائی انسان حیران رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی مضاف اور مضاف الیہ تو ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں. غلام زیدن، غلام اور ذات ہے، زید اور ذات ہے، مضاف مضاف الیہ ایک دوسرے کے مغایر ہیں، پھر بھی الف ندبت کو کہاں بڑھاتے ہیں؟ مضاف الیہ کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کی ذات الگ الگ ہے بھائی، اور موصوف صفت دونوں وہ تو ایک ہی چیز ہیں. زید تاجر، موصوف کون؟ زید. تاجر بھی کون؟ وہی زید ہے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں. تو مضاف مضاف الیہ کی تو ذات الگ ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں مضاف الیہ کے آخر میں الف بڑھا سکتے ہیں. تو موصوف صفت کی تو ذات ہی ایک ہے، وہ تو ایک ہی ذات پہ دلالت کر رہے ہیں، تو وہاں بطریق اولا کیا ہے، الف کو صفت کے آخر میں بڑھا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں ومتنع الحاق الالف بصفت المندوب، اور ممتنع ہے अलिफ को मिलाना मंदूब की सिफत के साथ, बल यजिबु अन युल्हक़ बिल मौसूफी, बल्कि वाजिब है कि अलिफ को मिलाया जाए मौसूफ के साथ, मिसलु वा जैदा हुत्तवीलु। तो देखो इसमें जैद के साथ अलिफ को बढ़ाया गया है सिफत के साथ नहीं, लि अन्न तिसालहु बिस्सिफति लैसा कत्तिसालिल मुजाफी बिल मुजाफी इलैही, इसलिए क्योंकि सिफत का इत्तिसाल मौसूफ के साथ ऐसा नहीं है जैसा कि मुजाफ का इत्तिसाल होता है मुजाफिले के साथ, लि अन्नहु जी अभी लि तमामिल मुजाफी, इसलिए क्योंकि मुजाफिले को लाया जाता है मुजाफ को पूरा करने के लिए, मुजाफिले के बगैर तो मुजाफ का माना पूरा ही नहीं है, लिअन्नहु जी अभी लि तमामिल मुजाफी, इसलिए क्योंकि मुजाफिले को लाया जाता है मुजाफ को ताम करने के लिए, फहुआ कल जुज ई, तो मुजाफिले जो है वो जुज की तरह होता है, बिखिलाफ इस सिफत ही बखिलाफ सिफत के, फइन्नहु जी अबीहा बाद तमामिल मौसूफी, इस सिफत को लाया जाता है मौसूफ के पूरा हो जाने के बाद, यानी मौसूफ का माना पूरा हो चुका है उसके बाद सिफत को लाया जाता है, लि तख्सीसी अवि तौजीही, तख्सीस के लिए या तौजीह के लिए, फलिहादा जाजा, इसी वजह से जायज है, मिसलु या अमीर अल मुमिनीनाह, यूं कहना जायज है, वलम यजुज और जायज नहीं है, मिसलु वा जैद उत्तवीला, ये कहना जायज नहीं, खिलाफन ली यूनुस अब खिलाफ यूनुस नहवी के, फइन नहु युजव्विजु इल्हाक अल अलिफ बि आखिर सिफति, इसलिए क्योंकि वो जायज करार देते हैं अलिफ के मिलाने को बि आखिर सिफति सिफत के आखिर में, फइन इत्तिसाल अल मौसूफ बि सिफति व इन कान फिल लफ्ज अन कसम मिन अल इत्तिसाल बैन अल मुजाफी वल मुजाफी इलैही, इसलिए क्योंकि मौसूफ का जो इत्तिसाल है सिफत के साथ, वह इन कान फिल लफ्ज अन कसा, अगरचे लफ्जों के एतबार से यह नाकिस है यानी कम दर्जे का है, मीनल इत्तिसाल बैन अल मुजाफी वल मुजाफी इलैही, मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान इत्तिसाल से, मौसूफ का जो इत्तिसाल है सिफत के साथ वो कम दर्जे का है उस इत्तिसाल से जो मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान है, इल्ला अन्नहु अतम्मु मिन्हु मिन जिहतिल माना, मगर यह कि जो मौसूफ का इत्तिसाल है सिफत के साथ ये ज्यादा ताम है ये ज्यादा कामिल है, मिन जिहतिल माना किसके एतबार से, माना के एतबार से, किसके दरमियान, मौसूफ और सिफत के दरमियान, लित्तिहादिहिमा बिज़्ज़ाती, बवजह दोनों के मुत्तहिद होने जात के एतबार से, मौसूफ और सिफत जात के एतबार से मुत्तहिद होते हैं, फइन्ना तवीला, इसलिए क्योंकि तवील जो है हुआ ज़ैदुन ला गैरु, वो ज़ैद ही है कोई और नहीं है, बिखिलाफ अल मुजाफी वल मुजाफी इलैही, बखिलाफ मुजाफ और मुजाफिले के, फइन्नहुमा मुतगायिरानी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मुतगायिर हैं, मुजाफ की जात अलग होती है और मुजाफिले की जात अलग, वहका यूनुस और हिकायत किया है यूनुस नहवी ने, अन्न रजुलन ज़ाअ लहू क़दहानी, कि एक शख्स था उसके दो प्याले जो हैं वो जाया हो गए, एक शख्स था उसके दो प्याले जाया हो गए कहीं टूट गए होंगे, फ़क़ालत तो उसने कहा, वा जुमजुमतय शामी यतैनाह, वा जुमजुमतय शामी यतैनाह, और जुमजुमा याद रखो जुमजुमा जुमजुमतुन ये इंसानी खोपड़ी को भी कहते हैं, सर की जो हड्डी है इंसानी खोपड़ी, और इसी तरह जुमजुमा प्याले को भी कहते हैं और यहां प्याला मुराद है, और देखो यहां ये तस्निया है जुमजुमतुन की तस्निया बनाओ जुमजुमतानी जुमजुमतानी, और फिर इसकी इजाफत करो या की तरफ जुमजुमतानी दो प्याले, अब आगे या भी ले आओ मेरे दो प्याले, हाँ जुमजुमताया नून गिर जाएगा जुमजुमताया, फिर इसको मंदूब बनाओ और मंदूब जब मुजाफ हो तो वो मंसूब होता है, तो जुमजुमतैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा जुमजुमतैया मेरे दो प्याले, और आगे सिफत है अशामियतैनी शामियतुन शाम वाला, जैसे लाहौरियन का क्या माना लाहौर वाला, और लाहौरियतुन लाहौर वाली, तो शामियतुन शाम वाली, इसकी तस्निया बनाओ शामियतैनी, और आखिर में अलिफ बढ़ा दिया अशामी यतैनाह, वा जुमजुमतय शामी यतैनाह, हाय मेरे दो शामी प्याले, हाय मेरे दो शामी प्याले। तो कहीं मुल्क शाम से वो लाया होगा तो वो प्याले टूट गए, तो उसने कहा वा जुमजुमतय शामी यतैनाह, हाय मेरे दो शामी प्याले। वल जुमजुमतुल कदह, और जुमजुमा जो है कदह यानी प्याले को कहते हैं। तो देखो यूनुस से नहवी जो है उन्होंने एक अकली दलील भी दी और अरबों से सिमा को भी जिक्र फरमाया। अकली दलील क्या दी कि मौसूफ सिफत में इत्तेसाल शदीद है माना के एतबार से, क्योंकि दोनों की जात एक है, और मुजाफ मुजाफिले के अंदर वो इत्तेसाल नहीं क्योंकि दोनों की जात अलग है, और सिमा भी बतलाया कि उन्होंने एक फसीह अरबी को ये कहते हुए सुना था वा जुमजुमतय शामी यतैनाह। और देखो जुमजुमतैया मौसूफ है और अशामियतैन उसकी सिफत है, और सिफत के आखिर में उस शख्स ने अलिफ बढ़ाया भाई उस फसीह अरबी। लेकिन बहरहाल जमहूर कहते हैं कि नहीं ये शाज है भाई, कवानीन शाज चीजों पर मुरतब नहीं होते, अगर एक फसीह को कहते हुए सुन लिया तो इससे जाब्ता साबित नहीं होगा, क्योंकि किसी और से हमने, किसी और फसीह अरब से ऐसा हमने नहीं सुना कि उन्होंने ये जो अलिफ है इसको सिफत के आखिर में बढ़ाया हो भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वयजूज़ु लिक़ियामी क़रीनतिन हस्फ़ु हर्फ़िन निदाई मअस्मि अल-जिन्सी, पहले मतन मतन देख लें। वयजूज़ु हस्फ़ु हर्फ़िन निदाई, और हर्फ़े निदा को हज़फ करना जायज है, हर्फ़े निदा को हज़फ करना जायज है, और सिर्फ किस हर्फ़े निदा का हज़फ जायज है, या का, और किसी का हज़फ जायज नहीं। और ये या भी कब हज़फ करेंगे, जब करीना हो, यह बात पहले गुजर चुकी है, जहां भी हजफ हो वहां क्या चाहिए, करीना चाहिए कि सुनने वाले को पता चले कि यहां कोई लफ्ज महजूफ है। तो कहते हैं वयजूज़ु हज़्फ़ु हर्फ़िन निदाई, और जायज है हर्फ़े निदा को हजफ करना, इल्ला मअस्मिल जिन्सी, मगर किसके साथ, इसमें जिन्स के साथ, वल इशारती, और इसमें इशारा के साथ, वल मुस्तगासी वल मंदूबी, और मुस्तगास और मंदूब इनके साथ जायज नहीं। इसमें जिन से मुराद वो नकेरा है जिस पर या दाखिल करते हैं, कभी मारिफा बनता है कभी नहीं बनता, जैसे या रजुलू, अगर मुआयन आदमी का इरादा करें तो ये मारिफा बन गया, तो पहले रजुल नकेरा था, और कभी कभार जब मुआयन का इरादा ना हो तो फिर ये मारिफा भी नहीं बनता, या रजुलन खुज भी यदि, ए आदमी मेरा हाथ थाम लो, जब अंधा किसी को कहे। तो यहां इसमें जिन से क्या मुराद है, वो जो निदा से पहले नकेरा था, इससे क्या मुराद है, वो इसम जो निदा से पहले नकेरा था फिर ये उस पर या दाखिल हुई, फिर चाहे वो मारिफा बने या न बने। मारिफा कब बनेगा, जब मुआयन का इरादा किया जाए, और नकेरा कब रहेगा, जब मुआयन का इरादा न हो। तो इसमें जिनसे क्या मुराद है, दोहराएं भाई जुबान से, वो जो निदा से पहले नकेरा था वो मुराद है। तो ये जो नकेरा है इससे हर्फ निदा का हजफ जायज नहीं। वयजूज़ु हज़्फ़ु हर्फ़िन निदाई इल्ला मअस्मिल जिन्सी, मगर यह कि वह हर्फ निदा किसके साथ आए, इसमें जिन्स के साथ, यानी वो जो नकेरा है, फिर हजफ जायज नहीं। मसलन या रजुल, आप या को हजफ करते हैं, रजुल कह देते हैं रजुलो, तो सुनने वालों को पता नहीं चलेगा भाई कि यह यहां या हर्फ निदा महजूफ है। आलम वगैरह हो वहां तो पता चल जाता है, क्योंकि आलम को निदा कसरत से दी जाती है, लेकिन आम नकेरा है उसके तो मुनादा होने का पता ही तब चलता है जब उसके साथ कोई हर्फे निदा आ जाए, या रजुलू या रजुलान, इस या ने बताया कि ये मुनादा है। अगर कोई हर्फे निदा ही साथ नहीं होगा, आप रजुलू या रजुलान कह भी देंगे, सुनने वालों को पता नहीं चलेगा कि यहां हर्फे निदा महजूफ है, लिहाजा इनसे हर्फे निदा का हजफ जायज नहीं। और इसी तरह इसमें इशारा जो है या हाजा, अब इससे आप या को हजफ करना चाहते हैं, नहीं भाई इससे भी हजफ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी पता नहीं चलेगा कि ये मुनादा है। या हाजा भाई, मैं या को गिरा देता हूं, हाजा कुछ आपको पता चला ये मुनादा है, नहीं पता चलेगा भाई। तो इसमें इशारा भी ना हो, नीज मुस्तगास और मंदूब भी ना हो, जिससे आप हर्फ निदा हजफ करना चाहते हैं वो मुस्तगा, वो इसमें जिन्स भी नहीं होना चाहिए, वो इसमें इशारा भी नहीं होना चाहिए, और मुस्तगास और मंदूब भी नहीं होना चाहिए भाई। क्यों, वजह यह कि मुस्तगास और मंदूब में तो अक्सर आवाज को लंबा करना मकसूद होता है, आखिर में अलिफ मिलाया जाता है, और हजफ तो उसके खिलाफ हो जाएगा भाई, हजफ से तो लफ्ज और मुख्तसर हो जाएगा भाई। تو کہتے ہیں پھر دیکھیے ترجمہ، تو کہتے ہیں وہ یجوز حذف حرف النداء الا مع اسم الجنس، اور جائز ہے حرف ندا کو حذف کرنا مگر اس میں جنس کے ساتھ، یعنی اس میں جائز نہیں. والاشارتی، اور اس میں اشارہ میں بھی جائز نہیں. والمستغاث والمندوب، اور مستغاث اور مندوب میں بھی جائز نہیں. نحو یوسف اعرض عن هذا، ایا یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو، اے یوسف اس سے اعراض کرو. اب یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے اور اس کے لیے قرینہ بھی چاہیے. قرینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرینہ کہ یہ مقام خطاب ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، دیکھو آگے امر آ رہا ہے اعرض عن هذا، اس سے اعراض کرو، دیکھو خطاب کیا جا رہا ہے، معلوم ہوا یوسف بھی کیا ہے، منادا ہی ہے، اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو یہ مقام خطاب ہے. توجہ ہے، مقام خطاب کو پتا کس سے چلا، یہ جو آگے عارض عن ہذا حکم دیا جا رہا ہے ان کو. آگے دیکھیے وہ ایوہ الرجل، اور ایوہ الرجل اس سے بھی یا کا حذف جائز ہے. بھئی اس میں کیسے پتا چلے گا، قرینہ بھی چاہیے. کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ ایوہ اور ایتوہا بغیر ندا کے اس طرح نہیں آتے بھائی، ایوہ الرجل بغیر ندا کے نہیں آتا بھائی. تو یہاں یہ ایوہ الرجل، یہ ایوہا کے بعد معرف باللام وغیرہ آ رہے ہیں، اسی سے پتا چل جائے گا کہ یہ منادا ہے. تو کہتے ہیں ایوہا الرجل او ایوہا ذر رجل یا ایوہا ذر رجل. اس میں یاد رکھو ایوہا الرجل سے حرف ندا کا حذف جائز ہے، اور میں نے آپ کو ترکیب بتلائی تھی، یا ایوہا الرجل کیا ترکیب تھی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ایو مبنی علی الضم یہ ہے موصوف، اور ہا حرف تنبیہ، اور الرجل اس کی صفت. تو ایوہا اور ایتوہا سے حرف ندا کا حذف تب جائز ہے جب اس کی صفت معرف باللام آئے. توجہ ہے، ایوہا اور ایتوہا سے حرف ندا کا حذف کب جائز ہے، جب اس کی صفت آگے معرف باللام آئے، یا ایوہا الرجل، ایو موصوف اور آگے الرجل معرف باللام اس کی صفت آ رہی ہے، لہذا آپ یہاں سے یا حذف کر سکتے ہیں، یا ایو یا گرا دیں ایو ہر رجل. اور اگر اس کی صفت معرف باللام نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کی آگے جو صفت آئے اس صفت کی صفت معرف باللام آنی چاہیے، جیسے یا ایو ہر رجل. توجہ سے سنو، ترکیب سنو، یا ایو ہر رجل، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ایو مبنی علی الضم ہے، یہ منصوب محلن ہے، منادا ہے، ایو موصوف، آگے کس طرح ہے، ایو ہاذا الرجل، ایو ہاذا الرجل، توجہ ہے. تو ایو ہے موصوف اور آگے زا پھر موصوف ہے، اور اس الرجل اس زا کی صفت ہے، اور پھر وہ زا جو ہے اپنی صفت کے ساتھ مل کر پھر یہ صفت بنے گا ایو کی. توجہ ہے، ایو موصوف پھر آگے زا اس کی صفت ہے، ایو ہے موصوف آگے زا اس کی صفت ہے، لیکن اس زا کے پھر آگے صفت کیا ہے، الرجل ہے. کیا ہے؟ الرجل ہے. یہ ذرا کتاب پہ نظر رکھیں، ایو ہاذا الرجل، عبارت مل گئی متن متن، یہ اس میں ایو کیا ہے، موصوف، اور آگے زا اس کی صفت ہے، لیکن زا خود بھی موصوف ہے اور الرجل اس کی صفت ہے. تو ایو موصوف، زا اس کی صفت ہے لیکن زا خود بھی موصوف ہے اور الرجل اس کی صفت ہے. توجہ ہے. تو ادھر دیکھیے، میں نے بتایا ایو کو جب ندا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے حرف ندا کا حذف تب جائز ہے جب اس ایو کی صفت آگے معرف باللام آئے. ایو ہر رجل، دیکھو ایو کی صفت کیا آ گئی، ہر رجل معرف باللام. یا اس کی صفت اگر معرف باللام نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کی ایسی صفت آئے جو خود آگے پھر موصوف ہو رہی ہو، کس کے ساتھ، معرف باللام، جیسے ایو حاضر رجل. ایو کی صفت تو زا ہے اور زا تو معرف باللام نہیں، لیکن زا آگے خود موصوف ہے، کس کے لیے، معرف باللام کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی. لہذا ایوہ الرجل بھی کہہ سکتے ہیں، یا کو حذف کر لیں، ایوہ ذا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں، یا کو حذف کر لیں، لیکن آپ کہتے ہیں یا ایوہ ذا، اب اس میں سے آپ یا حذف کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایو کی صفات نہ آگے معرف باللام ہے اور نہ ना कोई ऐसी सिफत है जो खुद मौसूफ हो रही हो किसके साथ, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी आगे कोई मुअर्रफ बिल्लाम नहीं, मुअर्रफ बिल्लाम आगे होगा तो फिर हर्फ निदा का हज़्फ जायज है, वैसे जायज नहीं। भाई बात भी समझ में आई कि नहीं? तो हासिल कलाम क्या कि अय्यू से हर्फ निदा हज़्फ कर सकते हैं बशर्ते कि अय्यू की सिफत मुअर्रफ बिल्लाम हो या अय्यू खुद मौसूफ हो रहा हो ऐसी सिफत के साथ कि वो सिफत मौसूफ हो रही है मुअर्रफ बिल्लाम के साथ। भाई तो कहते हैं नहु यूसुफ आरिज अन हाजा व अय्युहर रजुलू औ अय्युहाजर रजुलू। जी अब देखिए सारे को शरा के साथ कहते हैं वयजूजु लिकियामि करीनतिन और जायज है लिकियामि करीनतिन अय वक्त कियामि करीनतिन। ये लाम किस माना में है? वक्त के माना में है, ये बात पहले गुजर चुकी है भाई। और जायज है करीना कायम होते वक्त हज़्फ़ु हर्फ़ निदाई हर्फ़ निदा को हज़्फ़ करना इल्ला इदा काना मुकारिनन मास्मिल जिन्सी मगर ये कि वो हर्फ़ निदा मिला हुआ हो इसमें जिन्स के साथ। भाई इसमें जिन्स से क्या मुराद है? कहते हैं वयानी बिही माकाना नकिरतन कबलन निदाई और इरादा किया इसके जरिए साहिब काफिया ने वो जो नकेरा हो निदा से पहले सवा उन तअर्रफा बिन निदाई बराबर है कि वो मारिफा बन जाए निदा की वजह से कया रजुलू औ लम यतअर्रफ या वो मारिफा न बने मिसलु या रजुलन लिअन्न निदा अहू लम यकसुर। भाई ये जो इसमें जिन्स है इससे हर्फे निदा को क्यों नहीं हजफ कर सकते? अब वो वजह जिक्र कर रहे हैं लिअन्न निदा अहू लम यकसुर कसरत निदा इलआलमी इसलिए क्योंकि ये जो इसमें जिन्स है इसकी निदा इतनी कसीर नहीं है जितनी कि आलम की निदा कसीर होती है। फलव हुजिफा मिनहू हर्फ उन निदाई अगर इससे हर्फ निदा को हजफ कर लिया जाए यानी इसमें जिन्स से तो लम यसबकी जहनु इला अन्नहु मुनादन तो जहन इस बात की तरफ सबकत नहीं करेगा कि यह मुनादा है, जहन इस बात की तरफ नहीं जाएगा कि यह मुनादा है। वल इशारती और वो हर्फ निदा इसमें इशारा के साथ भी मिला हुआ न हो। देखो वल इशारती इसका आतफ किस पर है? इसका आतफ है अल जिन्स पर। भाई तो अल जिन्स को उठाएं और अल इशारा वहां रखें तो इबारत क्या बन गई? इल्ला मास्मिल इशारती। तो साहिबे जामी यही बतला रहे हैं आगे आई व इल्ला मास्मिल इशारती और न ये कि वो हर्फे निदा इसमें इशारा के साथ हो यानी उस वक्त भी फिर हजफ नहीं कर सकते लिअन्नहु कस्मिल जिन्स इसलिए क्योंकि इसमें इशारा भी इसमें जिन्स की तरह है। फिल इबहामी किसके अंदर? इबहाम में मुबहम होने में। भाई इसमें इशारा जब तक मुशारु निले साथ नहीं आएगा पता नहीं चलेगा कि इसमें इशारा से क्या मुराद है। मसलन हाजा है हाजा इसके जरिए तो मैं किताब की तरफ भी इशारा कर सकता हूं मैं इसके जरिए कलम की तरफ भी इशारा कर सकता हूं मसलन मैं किताब की तरफ इशारा करता हूं हाजा आप समझ गए हाजा से क्या मुराद है किताब मैं कलम की तरफ इशारा करता हूं हाजा आप समझ गए क्या मुराद है कलम तो हाजा जो है ये जो इसमें इशारा है इसके लिए आगे मुशारुन इले चाहिए और वो मुशारुन इले कभी हाथ वगैरह के साथ इशारा किया जाएगा और कभी लफ्जों में जिक्र करते हैं हाजल किताबु हाजल कलमु तो लफ्जों के अंदर मुशारुन इले होना चाहिए या उसकी तरफ कोई इशारा हिस्सिया होना चाहिए वरना तो इसमें इशारा का पता नहीं चलेगा कि इससे क्या मुराद है तो इसमें इशारा के अंदर इबहाम है तो इसमें इशारा के अंदर इबहाम है जैसे जैसे इसमें जिन्स में इबहाम था रजुलुन मैंने कहा रजुलुन क्या माना कोई एक आदमी कोई आपको पता चला कौन सा वाला आदमी नहीं तो जैसे इसमें जिन्स में इबहाम था इसी तरह इसमें इशारा में भी इबहाम है इसके लिए मुशारुन इले जरूर चाहिए और इसमें जिन्स से तो यह हर्फ निदा हजफ नहीं कर सकते थे तो इसमें इशारा जब उसकी तरह है तो इससे भी हर्फ निदा को हजफ नहीं कर सकते ये माना है लिअन्नहु कस्मिल जिन्स फिल इबहामी इसलिए क्योंकि इसमें इशारा जो है इसमें जिन्स की तरह है इबहाम के अंदर वल मुस्तगास वल मंदूबी और इसी तरह मुस्तगास और मंदूब भी ना हो यानी उसके साथ भी वो हर्फ निदा न मिला हुआ हो वरना उसका हजफ जायज नहीं होगा लिअन्नल मतलूब फीहिमा मद्दुस सौति व ततवीलुल कलामी इसलिए क्योंकि मुस्तगास और मंदूब जो है इनके अंदर जो मतलूब होता है वो मद्दुस सौति व ततवीलुल कलामी वो आवाज को लंबा करना और कलाम को लंबा करना वल हज़्फ़ युनाफी ही और हजफ तो उसके मुनाफी है फबकिया अला हाजा मिनल मआरिफी तो बाकी रह गए बिना बर इसके मारिफा में से बाकी रह गए बिना बर इसके भाई देखिए बात चल रही है हर्फे निदा को कभी कभार हजफ कर लिया जाता है, लेकिन आपको इन्होंने बताया कि वो इसमें जिंस भी नहीं होना चाहिए जिससे आप या हजफ करना चाहते हैं, और इसमें इशारा भी नहीं होना चाहिए, और मंदूब और मुस्तगास भी नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो मारिफा रह गए उनसे या का हजफ जायज है, अब साहिब जामी आपको बताएंगे। बाकी जो मारिफा रह गए, आपने पढ़ा है मारिफा की सात किस्में हैं, कौन कौन सी? तमाम जमीरें हैं, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला हैं, अलम है, मुअर्रफ बिल्लाम है। इन पांच में से किसी एक की तरफ कोई मुजाफ हो जाए और एक मारिफा बा निदा, मारिफा बा निदा, मारिफा बा निदा तो निकल गया क्योंकि अभी बताया या रजुलू वगैरह निकल गए, उनसे या को हजाफ नहीं कर सकते। बाकी कितने मारिफा रह गए? छह। उनमें से इसमें इशारा को भी निकाल दिया, बाकी कितने रह गए? पांच। उनसे आप हरफे निदा को हजफ कर सकते हैं। अब वो जिक्र करेंगे सारे। तो कहते हैं फबकिया अला हाजा मिनल मारिफिल लती यजूज़ु फीहा हस्फ हर्फ निदाई, तो बाकी रह गए बिना बरिस के मारिफा में से वो जिनसे हर्फ निदा का हजफ करना जायज है। अल आलमु, क्या बाकी रह गए? आलम बाकी रह गया। आगे एक एक को गिनवाएंगे और मिसालें भी देंगे। सवा उनका न मदल इन अन हर्फ इन निदा इक लफजती अल्लाह فَإِنَّهُ لَا يُحْذَفُ مِنْهُ إِلَّا مَعَ إِبْدَالِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ مِنْهُ। ये एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं साहिब जामी। एतराज यह होता है, आपने हमें क्या कहा कि हर्फे निदा को इसमें जिन से भी हजफ नहीं कर सकते, इसमें इशारा से भी हजफ नहीं कर सकते, मुस्तगास और मंदूब से भी हजफ नहीं कर सकते, हालांकि लफ्ज अल्लाह से भी हर्फे निदा को हजफ नहीं कर सकते। आपने लफ्ज अल्लाह को जिक्र नहीं फरमाया। तो साहिबे जामी बतलाएंगे कि बाकी आम इसम जो हैं, बाकी आम आलम जो हैं, उनसे हर्फे निदा को वैसे ही हजफ कर लेते हैं, कोई इवज नहीं लाते। या जैदु, उसके बजाय आप क्या कह देते हैं? जैदु, वो जो या हजफ की उसका कोई इवज नहीं लाए। लेकिन लफ्ज अल्लाह के अंदर हर्फे निदा को हजफ तो करते हैं लेकिन उसका इवज भी फिर लेकर आते हैं, चुनाचे लफ्ज अल्लाह के आखिर में फिर मी में मुशद्दद ले आते हैं। तो पहले क्या था? या अल्लाह, अब या को गिराया और आखिर में मीम मुशद्दद ले आए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। बात समझ में आ रही है? तो ये मीम मुशद्दद किसका इवज है? वो जो या हजफ हुई है। तो साहिब जामी बतलाना ये चाहते हैं कि भाई लफ्ज अल्लाह से भी हर्फे निदा गिर जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आम इसम में बदल नहीं लाते और इसमें बदल ले आते हैं। बात समझ भी आई कि नहीं? इन्होंने कहा था ना कि लफ्ज अल्लाह से भी हर्फे निदा को हजफ नहीं कर सकते, उसको आपने शुमार नहीं किया। तो बतलाया कि नहीं भाई, उससे भी गिरता है, बस फर्क यह है कि वहां फिर इवज ले आते हैं भाई। तो कहते हैं फबकिया अला हाजा मिनल मारिफिल लती यजूज़ु फीहा हस्फ हर्फिन निदाई, तो बाकी रह गए बिना बर इसके वो जो मारिफा जिनके अंदर हर्फे निदा का हजफ जायज है, उनमें बाकी रह गए। क्या बाकी रहे? अल अलमु, अलम बाकी रहा। सवा उनका न मा बदल इन अन हर्फिन निदाई, बराबर है कि वो बदल के साथ आए हर्फे निदा से, यानी बराबर है कि उसके साथ बदल हो हर्फे निदा से, हर्फे निदा से कोई बदल आए का लफ्जती अल्लाह, जैसे कि लफ्ज अल्लाह। फइन्नहु ला युहज़फ़ु मिन्हु इल्ला मा इब्दालिल मीमिल मुशद्ददति मिन्हु, इसलिए क्योंकि इससे हर्फ निदा को हजफ नहीं किया जाता मगर साथ इसके कि उसको मीम मुशद्ददा के साथ बदल दिया जाता है। नहु अल्लाहुम्मा, जैसे अल्लाहुम्मा। औ बिगैरि बदलिन, या वो अलम बगैर बदल के आए, अलम यानी आम आलम में तो बदल नहीं लाते लेकिन लफ्ज अल्लाह में बदल लाते हैं, लेकिन हजफ उससे भी हर्फ निदा हो जाता है। नहु यूसुफ आरिज अन हाजा अय्या यूसुफ, देखो यहां या हर्फे निदा महजूफ है। व लफ्जतु अय्यिन, और अय्यू का लफ्ज भी रह गया, अभी बताया अय्यू हर रजुलु, यहां या क्या है? महजूफ है। तो कहते हैं व लफ्जतु अय्यिन, और अय्यून का लफ्ज भी बाकी रह गया। अदा वो सिफा भी दिल्लामी, जब इस अय्यू को मौसूफ किया जाए किसके साथ? जुल्लाम के साथ, यानी मुअर्रफ बिल्लाम के साथ। नहु अय्युहर रजुलु अय्या अय्युहर रजुलु, देखो बतलाया यहां या महजूफ है। औ बिल मौसूफ बी जिल्लामी, या वो अय्यु उसको मौसूफ किया जाए, ऊपर इबारत को जोड़ें भाई, इदा वुसिफा बी दिल्लामी, तो बी जिल्लाम को हटाएं, इदा वो सिफा, जब अय्यू को मौसूफ किया जाए, बिल मौसूफ बिजिल्लाम, किसके साथ? मौसूफ बिजिल्लाम के साथ, यानी अय्यू की जो सिफत आ रही है वो खुद मौसूफ है जुल्लाम के साथ भाई। नहु अय्यू हादर रजुलू, अय्या अय्यू हादर रजुलू, यानी यहां भी या हरफे निदा महजूफ है। फला यजूजुल हज़्फ मिन अय्यू हाजा, लिहाजा अय्यू हाजा से हजफ जायज नहीं। मिन गैर अय्यू तसफ हादा बिजिल्लामी, बगैर इसके के मौसूफ हो ये वाला हाजा जुल्लाम के साथ। इस हाजा की सिफत मुअर्रफ बिल्लाम आएगा, ये अय्यू हाजा, इसके आगे कोई मुअर्रफ बिल्लाम आएगा तो फिर ही इससे या हरफे निदा का हजफ जायज है, वैसे जायज नहीं जी। इसी तरह वल मुजाफ इला अय्यू, देखो वो मारिफा गिनवाते जा रहे हैं, अलम को भी गिनवा दिया, अय्यू जो था वो उसको भी गिनवा दिया, और आगे वल मुजाफ इला अय्य मारिफत इन कानत, या वो मुनादा जो मुजाफ हो किसी भी मारिफा की तरफ। नहवो गुलाम जैदिन, नहवो गुलाम जैदिन इफ़ाल कज़ा, अय्या गुलाम जैदिन इफ़ाल कज़ा, देखो यहां भी या हज़फ है, ए जैद के गुलाम ऐसा करो, तो मारिफा की तरह जो मुजाफ हो मुनादा उससे भी या हरफ निदा का हज़फ जायज है। वल मौसूलातु, और अस्माए मौसूला भी बाकी रह गए उनसे भी जायज है। नहवु मन ला यजालु मुहसिनन अहसिन इलैया, एक आदमी दूसरे को कहता है मन ला यजालु मुहसिनन, वो जो हमेशा एहसान करने वाला है, अहसिन इलैया, मेरे साथ भी एहसान करो। असल में क्या था, या मन ला यजालु मुहसिनन, ए वो आदमी जो हमेशा एहसान करते हो, अहसिन इलैया, मेरे साथ भी एहसान करो। तो यहां से या को हजफ कर लिया ये मन इसमें मौसूल से। व अम्मल मुजमरातु, और बाकी जो जमीरे हैं, फशज निदा उहा, तो उनकी निदा शाज है। नहु या अंत व या इया का, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अमल मुजमरातु फशज निदा उहा, तो बाकी जमीरें जो हैं उनकी निदा शाज है। नहु या अंत व या इया का, तवज्जो है, या अंत ये जमीरें मरफू ले आए, व या इया का जमीरें मनसूब ले आए, क्योंकि मुनादा मनसूब होता है। तो दोनों तरह निदा आई है कलाम अरब में, लेकिन शाज है भाई। मतन मतन आगे देखिए, व शजफी असबिह लैलु व इफ्तदी मखनूकु व अतरिक करा, और शाज है असबिह लैलु इफ्तदी मखनूकु और अतरिक करा। इनके अंदर देखो इसमें जिन्स है और उससे हरफ निदा को हजफ किया गया। इन्होंने हालांकि बताया था कि इसमें जिन्स से हरफ निदा का हजफ जायज नहीं, और इसमें जिन्स किसे कहते हैं, वो जो निदा से पहले नकेरा हो। तो असबिह लैलु असल में है असबिह या लैलु, या को यहां हजफ कर लिया गया, और लैल मारिफा है नकेरा है, लैल नकेरा है भाई, लैल नकेरा है। तो देखो ये इसमें जिन्स है भाई, लेकिन इससे हरफ निदा को हजफ कर लिया गया। इफ्तदी मखनूकु असल में है इफ्तदी या मखनूकु, खनका यखनूकु का माना है किसी का गला दबाना, तो मखनूक जिसका गला घोंटा गया है, गला दबाया गया है, तो इफ्तदी या मखनूकु फिदिया देकर जान छुड़ाओ, या मखनूकु ए गला घोंटे हुए। तो देखो ये मखनूक ये नकेरा है, और इससे या हरफ निदा को क्या कर लिया गया, हजफ, तो इसमें जिन से या का हजफ लाजिम आया। इसी तरह अतरिक करा, अतरा का युतरिकु का माना है सर झुकाना, अतरिक करा, करा ये करवान था असल में, करवान एक खूबसूरत परिंदा है, इसको उर्दू में सुरखाब कहते हैं, सुरखाब कहते हैं, और इसको निदा दी जाती है। अतरिक करा असल में क्या था, अतरिक या करा, फिर या को हजफ कर लिया गया, और करा वही करवान है भाई, और ये इसमें जिन्स है। करवान से कोई खास परिंदा मुराद है नहीं, ये नकेरा है भाई। तो ये मिसालें जो हैं इनके अंदर नकेरा से यानी इसमें जिन्स से हरफे निदा को हजफ कर लिया गया, और ये सब शाज हैं। ये क्या है, शाज हैं। देखिए भाई मतन मतन कहते हैं व शज असबिह लैलु व इफ्तदी मखनूकु व अतरिक करा, और शाज है असबिह लैलु ये भी शाज है, व इफ्तदी मखनूकु ये भी शाज है, व अतरिक करा और अतरिक करा ये भी शाज है भाई। अब शरा के साथ इसको देखिए, कहते हैं वशज़ा हज़्फ़ु हर्फ़ निदा मिन इस्मिल जिंसी, और शास है हर्फ निदा का हजफ करना इसमें जिंस से, फी असबिह लैलू, इसके अंदर असबिह लैलू के अंदर, ऐ सिर सुबहन या लैलू, यानी सुबह हो जा या लैलू, ऐ रात सुबह हो जा, हुज़िफ़ा हर्फ़ुन निदा मिनल लैली, हर्फ़े निदा को लैल से हज़फ़ कर लिया गया, मा अन्नहु इस्मु जिंसिन शुज़ूज़न, बावजूद कि ये इसमें जिंस है, शुज़ूज़न यानी ऐसा हज़फ़ है जो शाज है। भाई तर्जमा समझ में आया भाई? ये दरअसल ये सब ज़र्बुल मसल है, ज़र्बुल मसल। असबिह लैलू ये इमराउल कैस की बीवी ने कहा था, इमराउल कैस अरब का बहुत बड़ा शायर गुजरा है, तो ये उसकी बीवी ने कहा था, कहीं रात का वक्त था और किसी इमराउल कैस की आदतों बातों या किसी वजह से वो उससे तंग आ गई कि ये कैसा आदमी है और रात का वक्त है, अब इससे जान छुड़ाने की भी कोई सूरत नहीं है, किसी तरह सुबह हो जाए और मैं इससे तलाक लूं और इसे अपनी जान हमेशा के लिए छुड़ा लूं। तो अब वो तकलीफ में थी, गम में मुबतला थी भाई, और तो उस वक्त उसने कहा था असबिह लैलू, ए रात सुबह हो जा। तो ये ज़र्बुल मसल बन गया, जब कोई शख्स किसी चीज को शिद्दत से तलब कर रहा हो और गम के अंदर मुबतला हो तो उस वक्त कहते हैं असबिह लैलू। भाई कोई भी आदमी किसी तकलीफ में मुबतला है, गम में, मुसीबत में, और एक चीज को तलब कर रहा है और वो उसे मिल नहीं रही, तो उस वक्त वो क्या कहता है, असबिह लैलू, सुबह हो जा, ए रात सुबह हो जा, ताकि किसी तरह मेरी मतलूबा चीज मुझे मिल जाए। तो यह ज़र्बुल मसल बन गया अरबी जुबान के अंदर। इसी तरह इफ्तदी मखनूको, ये भाई कोई शख्स सोया हुआ था और तो रात को कोई चोर आया और आकर उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और उसका गला दबा दिया और गला दबाकर उसको कहने लगा इफ्तदी मखनूको, गला घोंटे हुए फिदिया देकर अपनी जान छुड़ाओ, यानी कोई माल वगैरह मुझे दो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भाई। तो ये ज़र्बुल मसल बन गई, इफ्तदी मखनूको, जब भी कोई शख्स किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो और माल वगैरह नहीं खर्च कर रहा तो उस वक्त लोग कहते हैं इफ्तदी मखनूको, ऐ गला घोंटे हुए फिदिया देकर अपनी जान छुड़ाओ भाई, कुछ माल खर्च करो भाई। इसी तरह अतरिक करा, अतरिक करा जो है ये कहते हैं ये मंत्र की तरह असर करता था, ये लोग सुरखाब को शिकार करने जाते थे, खूबसूरत परिंदा था उसको शिकार करते थे, तो वहां कहते थे अतरिक करा, अतरिक करा, इन नआमत फिल कुरा, के गर्दन झुका दे ऐ सुरखाब, गर्दन झुका दे ऐ सुरखाब, इन नआमत फिल कुरा, बेशक शुतुरमुर्ग भी बस्ती में है, शुतुरमुर्ग भी बस्ती में है। कहते हैं ये जो करावान है सुरखाब, ये शुतुरमुर्ग से बड़ा डरता है, उसको देखते ही सर झुका देता है, जमीन के साथ लगा देता है। तो लोगों ने बस अपने से जैसे देहात के लोग होते हैं, उन्होंने एक बात बना ली कि वहां जाकर ये कहते थे, कहते हम यूं कहते हैं अतरिक करा, अतरिक करा, इन नआमत फिल कुरा, सुरखाब गर्दन झुका दे, सुरखाब गर्दन झुका दे, क्योंकि शुतुरमुर्ग भी शहर में है, यानी शुतुरमुर्ग जो इतना बड़ा है जिससे तू डरता है उसको हमने शिकार कर लिया है और शहर पहुंचा दिया है, तू तो छोटी सी चीज है, अब तू भी शिकार हो जा और हमारे हाथ आ जा। इसके शिकार के लिए जाते थे ना रात के वक्त, यह रात को सोता नहीं है, तो कहते हैं ये आवाज सुनकर ये अपना सर झुका देता है, तो आराम से जाकर उस पर चादर वगैरह डालते हैं और उसको शिकार कर लेते हैं। वैसे देहात वालों की बातें, हो सकता है कुछ असर भी पड़ता हो, अतरिक करा, अतरिक करा, देखो लफ्जों में कुछ रवानी है, तो अल्फाज की रवानी से शायद कुछ असर भी पड़ता हो, अतरिक करा, अतरिक करा, इन नआमता फिल कुरा, अब उसको क्या पता है कि अरबी जुबान में इन लफ्जों का क्या माना है। तो बहरहाल वो कहते थे जी हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो ये सर झुका देता है, हम आराम से इसको पकड़ लेते हैं। बात समझ में आ गई जी? फिर देखिए भाई, फी असबिह लैलू, असबिह लैलू के अंदर ऐ सिर सुबहन या लैलू, यानी सुबह हो जा ए रात, हुज़िफ़ा हर्फ़ निदा मिनल लैली मा अन्नहु इस्मु जिंसिन शुज़ूज़न, हर्फ़े निदा को हज़फ कर लिया गया लैल से बावजूद इसके कि ये इसमें जिंस है, शुज़ूज़न ऐ हज़फ़न, हज़फ़न शाज़न, तो हज़फ़न शाज़न को दरमियान में ले आए, हुज़िफ़ा हर्फ़ुन निदाई, हर्फ़े निदा को शाज तौर पर हज़फ़ कर लिया गया लैल से बावजूद इसके कि ये इसमें जिंस है। क़ालत हुम्रअतु इम्रिइल क़ैसी, ये इम्राउल क़ैस की बीवी ने कहा था, हीन करिहत हु, जब उसने उसको नापसंद किया था, वफी इफ्तदी मखनूक, भाई इफ्तदी ये हमजा वसली है लेकिन यहां लफ्ज बोलकर लफ्ज मुराद है इसलिए यहां ये नहीं गिरेगा। कहते हैं वफी इफ्तदी मखनूकू, और इसी तरह ये शाज है हरफ निदा का हजफ करना इफ्तदी मखनूकू के अंदर अय्या मखनूकू। देखा यहां या हरफ निदा महजूफ है। कालहू शख्सुन, ये कहा था एक ऐसे शख्स ने वका फिल लैली, जो वाके हुआ था रात के वक्त अला नाइमिन, एक ऐसे सोने वाले पर मुस्तलकिन, जो चित लेटा हुआ था। भाई लेटना कभी इंसान एक पहलू पर लेटता है कभी दूसरे पर और कभी सीधा लेटता है, ये जो सीधा कमर लगाकर इंसान लेटता है ना इसको उर्दू में कहते हैं चित लेटना, चित लेटना यानी कमर जमीन पर लगी हुई है, और अरबी में इसको कहते हैं इस्तिलका भाई। तो कोई सीधा चित लेटा हुआ था तो चोर आया उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और गला दबा दिया और कहा कि फिदिया देकर अपनी जान छुड़ाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं कालहू शख्सुन वका फी लैल अला नाइमिन मुस्तलकिन। वका के कई मानी आते हैं, वका का एक माना है बैठना, तो यहां वका का माना बैठना के करेंगे। तो कहते हैं कालहू शख्सुन वका फी लैल अला नाइमिन मुस्तलकिन, ये कहा था उस शख्स ने जो बैठ गया था रात के वक्त अला नाइमिन मुस्तलकिन, चित सोए हुए शख्स पर यानी उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया था। फखा नकाहू, तो उसने उसका गला दबा दिया। वकाला, और कहा इफ्तदी मखनूकू, कि फिदिया देकर जान छुड़ाओ ए गला घोंटे हुए। हुजिफा हरफुन निदा अनिल मखनूके मा अन्नहुस्मु जिन्सिन शुजूजन, तो हर्फ निदा को शाज तौर पर हजफ कर लिया गया मखनूक से बावजूद इसके कि ये इसमें जिन्स है। वफी अतरिक करा, और इसी तरह अतरिक करा के अंदर हर्फ निदा को शाज तौर पर हजफ कर लिया गया। अय्या करवानु, असल में क्या था या करवानु, फिर तरखीम की गई अलिफ नून को गिराया और फिर वो को किससे बदला अलिफ से। तो कहते हैं वफी ही शुजूजानी, साहिब जामी फरमाते इस अतरिक करा के अंदर दो शाज हैं, असल में क्या था अतरिक या करा, तो इसमें दो शाज हैं। हज़्फ हर्फ निदा इमिन इस्मिल जिन्सी, एक तो हर्फ निदा को हजफ किया गया है इसमें जिन्स से। व तरखीम गैरिल आलमी, और निज तरखीम की गई है गैर आलम में, अलिफ नून भी गिराया गया, हालांकि तरखीम की वजूदी शर्त क्या थी कि वो ऐसा आलम हो जो तीन हरूफ से जायद हो या उसके आखिर में ताय तानीस हो, और करावान ये आलम भी नहीं और इसके आखिर में ताय तानीस भी नहीं, फिर भी इसके आखिर में तरखीम की गई तो ये इस एतबार से भी शाज है। तो कहते हैं वह तरखीम गैर आलमी, और तरखीम की गई गैर आलम की। कीला, कहा गया है हिया रुकियतुन यसीदून बिहिल करावाना, कि ये एक मंत्र है, रुकियतुन दम वगैरह करना और यह मंत्र वगैरह मंत्र जादू वगैरह। तो कहते हैं हिया रुकियतु यसीदून बिहल करवाना, ये ऐसा मंत्र है जिसके जरिए अरब जो है वो सुरखाब को शिकार करते हैं। वयकूलूना, और वो कहते हैं अतरिक करा अतरिक करा, ए सुरखाब गर्दन झुका दे, ए सुरखाब गर्दन झुका दे। इन नआमत फिल कुरा, बेशक शुतरमुर्ग जो है वो भी बस्ती में है। फयस्कुनु, तो वो साकिन हो जाता है। वयुतरिकु, और गर्दन झुका देता है। हत्ता युसादा, यहां तक कि उसको शिकार कर लिया जाता है। माना समझ में आ रहा है, आगे देखिए। वल माना अन्न नआमत अल्लदी हुआ अकबर मिन का कदिस्तीदा वहुमिल इलल कुरा फला तुखल्ला ऐजन। वल माना, और माना इसका यह है कि अन्न नआमत अल्लदी हुआ अकबर मिन का, कि वो शुतरमुर्ग जो तुझसे बड़ा है, कद उस तीदा, तहकीक उसको शिकार कर लिया गया है। उस्तीदा फिले मजहूल है, तो कहते हैं कद उस्तीदा, तहकीक उसको शिकार कर लिया गया है। वहुमिला इलल कुरा, और उसको बस्ती ले जाया गया है। फला तुखल्ला ऐजन, तो तुझको भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा, यानी तुझे भी वैसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, तुझे भी शिकार किया जाएगा। चुनाचे वो सर झुका देता है कहते हैं और शिकार हो जाता है। तो ये भी जरबुल मसल है, ये भी जरबुल मसल है। अतरिक करा, ये उस मौका पर बोलते हैं जब कोई बड़ा आदमी तो एक बात मान ले, बड़ा आदमी एक बात मान लेता है और उससे अदना वाला है वो जिद पर अड़ा हुआ है, बात ही नहीं मान रहा, तो उसको कहते हैं कि अतरिक करा, कि तुम क्या करो, अपनी गर्दन झुका दो। तुमसे आला वाला झुक गया है, बात मान गया है, तो तुम भी क्या करो, ये बात मान जाओ भाई। آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وقد یحذف المنادى لقيام قرينة جوازا، اور کبھی کبھار منادا کو حذف کر لیا جاتا ہے لقيام قرينة، قرینہ قائم ہوتے وقت، جوازا، اور یہ حذف جوازا ہوتا ہے بھائی. پہلے کیا بتایا، کبھی حرف ندا کو حذف کر لیتے ہیں، اب آپ کو بتا رہے ہیں کبھی کبھار منادا کو بھی حذف کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آگئی، حرف ندا باقی رہتا ہے اور منادا کو حذف کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں وقد یحذف المنادى لقيام قرينة جوازا، اور کبھی کبھار منادا کو جوازا حذف کر لیا جاتا ہے جس وقت قرینہ موجود ہو. نحو الا یسجدوا، الا یسجدوا اصل میں ہے الا یا قومی، الا یا قوم اسجدوا، سنو، الا سنو، یا قومی، اے میری قوم والو، اسجدوا، تم کیا کرو سر. تو الا یسجدوا اے الا یا قوم اسجدوا، تو یہاں قوم جو منادا تھا اس کو حذف کر لیا گیا، اور قرینہ موجود ہے جسے پتا چل رہا ہے. قرینہ کیا کہ یا حرف ندا اسجدوا فعل پر داخل ہو رہا ہے، حالانکہ حرف ندا وہ تو فعل پر داخل نہیں ہوتا. تو یہی قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں منادا محذوف ہے. تو کہتے ہیں بتخفیف اللہ، یہ اللہ کی تخفیف کے ساتھ ہے. اللہ پڑھنا بھائی، اللہ نہیں پڑھنا بھائی، اللہ، اللہ انہو حرف تنبیہ، بنا برس کے کہ یہ حرف تنبیہ ہے. ویا حرف ندائی، اور یا حرف ندا ہے. ایا قوم اسجدوا، اے میری قوم والو سجدہ کرو. والقرینۃ تمتنع دخول یا علی الفعل، اور قرینہ جو ہے وہ ممتنع ہونا ہے یا کے دخول کا علی الفعل فعل پر. قرینہ یہاں کیا ہے کہ یا فعل پر داخل نہیں ہوتی، لیکن یہاں داخل ہے، اس سے پتا چل گیا کہ یہاں منادا محذوف ہے. بخلاف قراءتی، جی یہ تو ایک قراءت ہے بھائی، الا یسجدوا، جبکہ عام قراءت کے اندر کیا ہے، اللہ یسجدوا، اللہ یسجدوا، یعنی یا حرف ندا نہیں ہے بلکہ یسجدوا فعل مضارے ہے، اور آخر میں نون بھی تھا، یسجدون، توجہ ہے، لا یسجدون، اور اس پر ان آیا، ان آیا، اور ان کیا کرتا ہے، فعل مضارے کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے. تو ان لا یسجدوا، اور پھر ان لا، نون ساکن آیا اور اس کے بعد لام ہے، تو یرملونا والا ضابطہ لگا یہاں پر. یرملونا کا ضابطہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد یرملونا، یعنی یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں. تو ان لا نون ساکن اور آگے لام آیا، اور لام کس میں سے ہے، یرملونا کے حروف میں سے ہے، تو نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا تو کیا بن گیا، اللہ. تو اللہ یسجدوا، تو دیکھیے کہتے ہیں بخلاف قراءتی اللہ یسجدوا بتشدید اللام، بخلاف اللہ یسجدوا والی قراءت کے لام کی تشدید کے ساتھ، لانہ لیس من ھذا الباب، اس لیے کیونکہ وہ اس باب سے نہیں ہے. یہاں تو ہم منادا کی بات کر رہے ہیں جس کو حذف کیا گیا ہو، اور اللہ یسجدوا کے اندر تو یا حرف ندا ہے ہی نہیں، وہ تو فعل کا جز ہے بھائی، فعل مضارع ہے، یسجدوا ہے بھائی. فَإِنَّ أَن حِينَ إِذٍ نَاصِبَةٌ لِلْمُزَارِعِ، اس لیے کیونکہ اس وقت پھر یہ جو ان ہے یہ نصب دینے والا ہے فعل مضارے کو. اُدْغِمَتْ نُونُهَا فِي لَامِ لَا، کہ ادغام کیا گیا اس ان کے نون کا لا کے لام میں، تو اللہ ہوا. وَيَسْجُدُ فِعْلٌ مُزَارِعٌ، اور يَسْجُدُ فِعْلِ مُزَارِعٌ ہے. سَقَطَ نُونُهُ بِالنَّصْبِ، جس کا نون گر گیا نصب کی وجہ سے، ان نے نصب دیا اور يَسْجُدُ کا نون گر گیا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی، سارا حل ہو گیا. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.